حسبي الله ما شاء الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس کے پاس جو آئے تو اس کو ختم کر لے. تھوڑا سا مزید پریکٹس کرے ایک ساتھ پڑھنے کی. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. جی امید ہے کہ آن لائن پہ آواز کلیئر ہے. کوئی انیوزل بات ہو تو آپ لوگ بتا دیں. ادھر سیرم آواز آ رہی ہے مجھے تھوڑی سی, پلیز آپ اگر چیک کر سکیں تو. اس کی سیٹنگ کھلی ہوئی اور اس کو آپ کوشش کر کے نا ادھر کر دیا کریں. کلوز ہوگا تو پیچھے تک آئے گی, اور اگر آپ کا دل چاہے تو وہ دوسرا بھی ساتھ پڑا شاید اس کی آواز ہے تو اس کو تھوڑا پیچھے کر کے وہ بھی مائک رکھ دیں. جی شروع کرتے ہیں. آج ہمارا سبق پچھلے سبق کی کنٹینیوشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سبق کو بھی پورا کریں اور اس کے بعد اگلے سبق پہ بھی چلیں. آپ سب تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں بن رہی آپ کے سننے کے بیچ میں؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ادھر جو ہے وہ کدھر ہے؟ یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے. چلیے ادھر بھی خالی ہے. یہاں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. جی پیچھے سے آ جائیں نسرین جی. آ جائیں جی آگے, ادھر آ جائیں. آپ دیکھیں کیسا لگتا ہے آگے بیٹھنے میں. مجھے موقع ملے میں تو کبھی بھی پیچھے نہ بیٹھوں. ٹھیک ہے, ایک ادھر کی بھی چیئر ہے اس کو بھی ٹھیک کیجیے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدک و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خاموشی سے دل سے اپنے کنسنٹریشن کے لیے درود شریف دل میں پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سب مل کے بول رہے ہیں کہ ہم نے کہاں تک پیچھے پڑھا تھا؟ آیت نمبر 25. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. جی آگے دیکھیں گے آیت نمبر 26. اللہ سبحانہ تعالی اب یہاں مزید بتاتے ہیں کچھ باتوں کو. اصل میں 26 آیت کا تعلق تو پیچھے سے اس کا ذکر ہو گیا تھا, لیکن میں یہیں سے دوبارہ شروع کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کو آگے سے لے کر چلے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, یعنی اس کو نپا تلا رزق دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرح بالحیات الدنیا, اور وہ خوش ہوتے ہیں یا مگن ہیں دنیا ہی کی زندگی میں. جبکہ ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے. پچھلی آیتوں میں ہم نے سود دار کی بات پڑھی, اور وہ کردار جو برے کام کرتا ہے, جو حقیقت میں وہ کام کرنے کے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جتنے مرضی گناہ کر لیں, جتنی مرضی بھاگ دوڑ ان کی اس دنیا کے لیے ہو جائے, دنیا ان کو ملنی اتنی ہی ہے جتنی ان کے نصیب میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہاں لفظ آپ دیکھیں یبسطو, تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت نام الباسط ہے, اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اسی طرح دیکھیے رزق کے اندر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھیں یقدیرو کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نام القادر اور القدیر ہے. صرف آدھے جملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور شروع میں لفظ اللہ بھی ہے, تو اگر آپ دیکھیں اللہ یبسطو رزق اور یقدر, چار لفظ ایسے ہیں کہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا کہ انسان بغاوت پہ نہ جائے؟ ہم آگے پڑھیں گے, قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے ہاتھ میں میں نے رزق کے خزانے دیے ہوتے یہ بغاوت کرنے لگ جاتے. دوسری بات اس آیت سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جو مرضی کر لو رزق اس کے ہاتھ میں. آپ اپنے بچے پہ تھوڑی سی توجہ کریں, माँ जब अपने हाथ में चीजों को रखती है तो बच्चा जितनी मर्जी दौड़ धूप कर ले, कोशिश कर ले, ये दे दें, वो दे दें, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे को उतना ही मिलता है जितना माँ उसके लिए चाहती है, क्योंकि माँ को पता है कि उस वक्त इसको किस चीज की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि तुम इस दुनिया में मगन हो, अल्लाह थोड़ा सा तुम्हारे साथ अलबासित बन के तुम्हारे रिस्क को बढ़ाता है, तो तुम क्या करते हो, तुम दुनिया में आके मस्तियां करते हो। फरीहू का लफ्ज यहाँ नागवार मानो में मगन हो गए हो, तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं। तुम्हारी दुनिया सामने आती है तो तुम्हें दीन पीछे लगता है, तुम्हारी दुनिया फटती है तुम्हारी आखरत सिमटने लगती है। तुम इस दुनिया के कामों को इतना अहम समझ लेते हो कि दूर पड़ी चीज के लिए भी तुम फिक्र आज से कर रहे हो और आज के दिन की नेकियों को तुम पीछे डालते हो। कभी हम सब अपने आप पर नजर डाल के देखें, हम सब अपनी तवज्जो अपने आप को परख सकते हैं अपने दिल की हालत से। अल्लाह ताला ने ये बात कहकर के देखो, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक मता है, बरतने की चीज है, और आपको पीछे बताया था कि मता का लफ्ज कहते हैं यूज की चीजें, इस्तेमाल की चीजें। पीरियड्स के कपड़े को, यानी वो कपड़ा जिस पे खैस का खून लग जाए उसको भी मता कहते हैं, यानी इतनी डिग्रेडेड दुनिया है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ये दुनिया आखरत के मुकाबले में ऐसे है कि जैसे किसी समंदर में कोई उंगली डाले तो उंगली को लगने वाला पानी दुनिया है, और जो पीछे जिसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं, वो आखरत है। इसी तरह एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुजरे और एक मुर्दा बकरी का बच्चा जमीन पर रखा हुआ था जिसके अंदर कीड़े चल रहे थे, बड़े बड़े कानों वाला, यानी हकीर। आपने रुक के पूछा तुम में से कोई है जो इसको लेना चाहे? साहब बड़े हैरान थे कि हम कैसे ले सकते हैं, ये तो कोई पैसों का कैसे लेगा। कहा एक दिरहम में लेते हो? कहा अल्लाह के नबी इसको तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दुनिया व मा फीहा, जो इसमें सब कुछ है उसमें इस सब की मिसाल इस मुर्दा बकरी के बच्चे से भी ज्यादा नहीं। जरा लिखिए, हम आज हर उस चीज के पीछे फिर रहे हैं जो एक बकरी के बच्चे से भी ज्यादा नहीं है। हकदारों को हक नहीं देते, लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों के हक छीनने की कोशिश करते हैं, कभी माल, कभी घर, कभी जायदादों की सूरत में। क्या हम सारा दिन इस अखीर चीज के पीछे भागते हैं, फिर सोचते हैं कि अल्लाह की नजरों में हमारी बहुत इज्जत हो, अल्लाह ताला हमें बहुत दे, ये कभी नहीं होगा। तो कुरान पढ़ने के दौरान अगर मेरे और आपके अंदर इस तब्दीली को मैं नहीं महसूस कर रही, या आप नहीं कर रहे, तो याद रखिए कि ये बहुत खतरनाक होती है। ना चाहते हुए भी कुरान पढ़ने के साथ साथ दुनिया कम होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक विंडो बड़ी करते जाएंगे तो पहले से खुली हुई दूसरी विंडो छुपती ही जाएगी, पर अगर आप उसको पूरा ही फुल स्क्रीन कर दें, 10 विंडोज आपके टीवी कंप्यूटर पे खुली होंगी, आपको सिर्फ वो नजर आएगी जो सबसे ऊपर है। पूछिए, कुरान मेरी जिंदगी की डेस्कटॉप पे कहाँ है? क्या मेरी दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों की नजर तो मेरी ये विंडो नहीं हो गई? खुली भी है हम सबकी, कोई मुसलमान नहीं कहता कि मैंने कुरान की विंडो नहीं खोली, लेकिन छुपी भी है। ऊपर इतनी विंडोज होती हैं, बार दफा आपने पहली चीज ढूंढनी हो, कई बटन बंद करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये खुली थी, मैं तो समझी बंद हो गई। ये है फरीहु बिल हयात दुनिया। इस तरह से ये लोग हैं कि जो दुनिया की जिंदगी पे रीच के थोड़े से फायदे की खातिर इतना बड़ा फायदा छोड़ दिया, क्योंकि इनको आखरत की जिंदगी के इनामात की उम्मीद नहीं है। इनकी कोशिश इस दुनिया के लिए, क्योंकि वो नजर आती है और फिर इस पे मुतमईन भी हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों के अंदर अब क्या आदत आ जाती है, इसका जिक्र आयत 27 में हम सब अपने ऊपर लेके देखेंगे। यानी आप इसको अगली आयत से यूं जोड़ लीजिए कि जब दुनिया की जिंदगी बड़ी लगने लगती है तो फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान जाहिर परस्त हो जाता है और निशानियां उसको फायदा नहीं देती। कैसे? आयत 27, कफरू, और कहते हैं ये काफिर लोग, लौ लौंजिला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, क्यों नहीं उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से। हर धर्मी का मुजाहिरा है, बार बार एक बात, इसको कहते हैं धान के बाद एक ही बात, आप पर कोई हिस्सी मोजा क्यों नहीं उतरा। वो क्या चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शोभदा बाज की तरह जब चाहें कोई करतब दिखाएं, जो आप चाहें वो मांगे वो फौरन हाजिर कर दें, ये ले लीजिए, ये हासिल कर लीजिए, वो कर लीजिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इन जाहरी चीजों की का वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह के मामलात करूंगा। लिहाजा याद रखिए कि जो है ना, वो हमेशा निशानियों के पीछे लगे रहते हैं। जो अंदर की बसीरत से नहीं देखता उसको निशानियां भी फायदा नहीं देती। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कुल इन अल्लाह युदिल्लु मन यशा, आप कह दीजिए कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, व यहदी इलैहि मन अनाब, और सिर्फ उसी को हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करे। बहुत ही खूबसूरत बात है इस एक आयत में। पहली बात डराने वाली है और दूसरी बात खुश करने वाली है। इस आयत का टॉपिक क्या है कि हिदायत किसको मिलती है। लोग कहते हैं कि हमें मोजज़े दिखाओ तो हिदायत आएंगी। लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिरेकल दिखा दो कि जिसको देख के मान जाएं कि आप बहुत है, कुछ है, दिस एंड दैट। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं हिदायत उसको मिलती है मन अनाब, जो इसकी तरफ खुद रुजू करे। हमारी जुबान में एक लफ्ज बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हें चाह नहीं तो हमें राह नहीं, तुम्हें हमारी चाहत नहीं है तो हमें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं आता, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। और जहां चाह नहीं वहां राह नहीं, जिधर इंसान को चाहत नहीं होती वहां की राहें वो देखता भी नहीं है। यही हाल लोगों का हिदायत के मामले में होता है। बड़े गौर से समझने की ये बात है इस वक्त मेरे और आपके लिए, जो हम 14वीं सीढ़ी के पास पहुंचने वाले हैं। आप समझते हैं कि इस कुरान को पढ़ने के बाद हिदायत मिल जाती है? ये तो ऐसी बात है कि आप कंप्यूटर पे गूगल मैप खोल के देख ले और यहां से ईस्ट लंदन का रास्ता देख ले तो पहुंच गया आप ईस्ट लंदन। क्या ईस्ट लंदन के रास्ते की सड़कों का पता चलना, वहां कितनी देर में पहुंचते हैं, कितना लगता है, क्या आप वहां पहुंच जाते हैं? नहीं जाते। चलिए लिखिए कैसे पहुंचेंगे। निकलिए घर से, गाड़ी निकाली या किसी की गाड़ी में सवार हुए, फिर दूसरा उसका मरहला होता है कि सही रास्ते का इंतखाब करें। वो आपको दिखा रहा है कि इस साइड पे आप वेस्ट साइड पे मुड़ जाएंगे, 2 घंटे चलते रहे आप कभी भी नहीं वहां पहुंचेंगे। तो गोया कि दुरुस्त रास्ते का इंतखाब जरूरी है। चल पड़े, ठीक है, दूसरी भी निशानी पूरी हुई। तीसरी निशानी क्या होगी, तीसरी क्या उसकी सूरत होगी कि आप रास्ते की मुश्किलात की वजह से वो रास्ता ना बदल जाए। ऐसे ही है ना, कहीं ट्रैफिक स्ट्रक है तो आप भी स्ट्रक हो लेकिन निकलेंगे नहीं, और उस रास्ते की सारी हर्डल्स को अबूर करके जब आप फिजिकली वहां पहुंचे फिर आप कह सकते हैं कि मैं ईस्ट लंदन पहुंच गई। इसी तरह से कुरान खुला है इस वक्त आपके सामने। ये कुरान आपका गूगल मैप ऑफ जन्ना है, गूगल मैप ऑफ गाइडेंस है। बल्कि जन्ना को छोड़ें, गाइडेंस की बात करें, क्योंकि इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, हिदायत के रास्ते से गुजर के इंसान जन्नत की मंजिल पे पहुंचेगा। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में हम बेहिदायते रहें और जन्नत मिल जाए, बस उनका वही हाल है कि जो चाहते हैं इस लंदन जाएं लेकिन निकलना नहीं चाहते। अब आप और मैं, हमने गूगल मैप खोल भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तस्दीक भी कर ली कि ये रास्ता ठीक है। फिर उसके बाद अब हम चल भी पड़े, अब हम कहां पहुंचे, में हम 13वीं सीढ़ी पे हैं। आप कह लीजिए कि यहां से हो सकता है 30 मील का सफर हो, तो हम अभी 13 मील चले हैं। क्या मिल गया इस लंदन? नहीं मिला। किस दिन मिलेगा? आखिरी दम तक, जिंदगी के आखिरी मोड़ तक अगर आप इस हिदायत की रोड पे नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके बरक्स आप देखिए कि जिन लोगों के दिल में तलब नहीं होती ना, सच्ची तड़प नहीं होती, वो ऐसी बातों पे अटकलें छोड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे इस रास्ते में कि आप सोचे तो आपका सीना छलनी हो जाए। हमारी जात पे 4 लफ्ज क्या लगते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोई एक जुमला हमें पता चल जाए, किसी ने हमारे खिलाफ बोला या लिखा है, तो हम सर से पांव तक आग वाले हो जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे, कभी कुछ कहते कभी कुछ। अबू जहल ये बात कह चुका था कि देखो ये तो मुकाबलेबाजी करते हैं हमसे, हम बनू हाशिम वालों के साथ हम हमेशा ही मुकाबले करते हैं, हम जो काम करते हैं ये भी करने लगते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, बनू उमैया का, अब्दुल्ला बिन उमैया का तस्कर आता है कि उसने भी आकर एक दिन बैठ के अबू जहल के साथ बातें की कि ये क्या करता है, किसी तरह इसको जिच करो, कोई मुतालबा करो। फिर एक मुतालबा आके अल्लाह के नबी के पास किया कि ये मक्का का शहर बड़ा तंग है, आप ऐसा कीजिए जरा ये बड़ा हो जाए, इस किस्म की बातें करते। कभी कहते कि जी यहां बाग उग जाए, यहां जरा सब्जा हो जाए, हरियाली हो जाए, जरा आप मौजदा दिखाइए, ये पहाड़ों को जरा दूर तो कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि हमें चलना फिरना आसान हो। एक ने आके कहा, वो देखिए आपको पता है कि दाऊद अलैहि सलाम के लिए पहाड़ मुसख्खर किए हुए थे, जब वो तस्बीह करते थे तो पहाड़ भी बोलते थे, जरा आप भी तो कोई ऐसा मौजदा दिखाएं कि ये मक्का के पहाड़ आपके साथ बोलने लग जाए, आप कोई दाऊद से कमतर तो नहीं। किसी ने आके कहा कि देखो सुलेमान अलैहि सलाम के लिए हवाएं मुसख्खर थी ना, बड़े बड़े फासले मुख्तसिर हो जाते थे, आप भी जरा ऐसा करें कि शाम और यमन का सफर हमारे लिए आसान हो जाए। इसी तरह एक और मुतालबा था, कहते थे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे ना, तो जरा आप भी तो कीजिए, कि आप किसी से कम है, आप हमारे दादा कुसई को जिंदा करके दिखा दीजिए, ताकि हम उनसे ही पूछ लें कि आपका दीन सच्चा है कि झूठा है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं मांगो और मांगो निशानियां, तुम्हें फायदा कोई नहीं होना, इसलिए कि तुम्हारे अंदर का बल्ब फ्यूज है। देखिए हम देखते हैं ना, आंखें देख रही हैं ना, लेकिन आंखों का पूरा सिस्टम अंदर है, अगर अंदर के सिस्टम में खराबी आ जाए ना, तो ये आंखें नहीं देख सकेंगी। और इसी तरह बाज़ दफा अंदर सब ठीक होता है, सिर्फ आंख के आगे एक पर्दा आ जाता है, तो भी डॉक्टर के पास जाके उस पर्दे को हटाते हैं ना। इसी तरह सूरज बाहर चमक रहा, आप और मैं इस सूरज की रोशनी में देख रहे हैं, कोई आंखें बंद कर ले तो क्या फिर वो उससे देख सकेगा? बिल्कुल नहीं देख सकेगा। यही कैफियत हिदायत की भी होती है। हिदायत का रास्ता तब तक दिखता रहता है जब तक अंदर की बसीरत भी हो और बाहर की बसारत भी हो। और अल्लाह कहता है कि तुम हिदायत को बाहर देखते हो, ये तो तुम्हारे अंदर होगी। हिदायत की एक नक निशानी है, और वो क्या? अल्लज़ीना आमनु वतत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, आयत 28 में, कि अगर देखना चाहते हो तुम हिदायत पे हो के नहीं, तो देख लो कि अंदर इत्मीनान कितना है। हिदायत पे होने की नक्द अलामत दिल का इत्मीनान, सुकून। इसलिए अगली आयत में अल्लाह ताला बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि अल्लज़ीना आमनु, पहली चीज ईमान, अमन देता है, सब चपलश खत्म हो जाती है, इधर से उधर उधर से इधर नहीं भटकता, बस एक खूंटे से बंध गया, ये सुकून लग गया ना, कि अब जहां जाना था वहां पहुंच गए, जो जिंदगी में थी ठहराव आने लगता है। आपको पता है कि डबल माइंडेड कैफियत बहुत इस तरह आपकी कैफियत होती है। आमनु की सूरत में इंसान सारे खुदाओं का इनकार करके एक रब की जात पे मुतमईन हो जाता है, फिर वतत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और इनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। दिल और रूह की तस्कीन का सबसे बड़ा जरिया अल्लाह का जिक्र है। अब देखिए जो हमारा जिस्म है ना, ये कैसा है, अगर आप अपने जिस्म को देखें, अगले सबक में भी बात होगी, सूरत इब्राहिम की तो पहली आयत ही, पर इसी के साथ ही समझ लें तो आपको वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दिल जिस्म जो है ना, मिट्टी का बना हुआ है, और आपको ये पता है कि मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, मिट्टी के अंदर से लाइट पास नहीं होती, इसीलिए मिट्टी के घरों में लोगों ने छोटे छोटे झरे बनाए होते थे कि सूरज की रोशनी अंदर आए। ठीक है, इस मिट्टी के वजूद के अंदर अल्लाह ने एक लालटेन रखी हुई है, और वो क्या है? तत्मईन्नु कुलूबुहुम। तो जिस तरह किसी चीज को नूरानी करने के लिए, उसको एनलाइटन करने के लिए इंसान कोई बल्ब जलाता है, कभी ट्यूब जलती है, कभी कोई रेजर आप शो करते हैं, इस तरह अपने वजूद के साथ इंसान मिट्टी का वजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस मिट्टी के वजूद को जो चीज नूरानी बनाती है, वो अल्लाह का जिक्र है। सवाल पैदा होता है कि इत्मीनान क्या होता है? आपके ज़हनों में ये सवाल आ सकता है कि यहां लफ्ज इत्मीनान आया है, तो इत्मीनान किसको कहते हैं? आप अपने आप से पूछिए, आपको अभी तक क्या लगता है कि इत्मीनान किस कैफियत का नाम है? फिर आप देखेंगे कि असल में जो इत्मीनान है वो मेरे पास है भी है कि नहीं है। तो इत्मीनान क्या होता है कि जिस चीज की तलब थी उसको पाने के बाद किसी और चीज की इंसान को जरूरत ना रहे। फिर समझ लीजिए कि इत्मीनान क्या है, कि इंसान अपने मतलूब को पाकर फिर मुतमईन हो। बस आप देखिए कि जिस पेट का इत्मीनान क्या है, कि भूख की वजह से जो पेट में दर्द हो रहा था ना, वो खत्म हो गया, अब और खाना आप नहीं खा सकते, इसको आप इत्मीनान कहेंगे पेट का। आंखों का इत्मीनान क्या था कि नींद से बोझल हो रही थी आपकी आंखें, फिर उसके बाद आप सो गए, और जब आप सो के उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखें मुतमईन हो गई। जिस्म के जिस हिस्से की जो जरूरत थी वो इस तरह से पूरी हो जाए कि उसके बाद मजीद की जरूरत ना रहे, मजीद की ख्वाहिश ना रहे, इसको आप कहेंगे कि ये इत्मीनान की कैफियत है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब एक इंसान इत्मीनान के नाम पर इस तरह के हालात का शिकार होता है कि मेरा रब मुझे क्या दे जो मुझे चाहिए, उस वक्त आप देखेंगे कि आप अपने दिल के अंदर जो खुशी महसूस करेंगे ना, उसको आप इत्मीनान कहेंगे। इत्मीनान का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, ये रूह की एक कैफियत का नाम है, और रूह की कैफियत जो होती है ना, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इसलिए जब इंसान को कि रूह को इत्मीनान मिलता है ना, तो फिर उसकी बात होती है। अल्लाह सुब्हान तआला ने पिछली आयत में बात कर दी कि तुम हिदायत मांगते हो और अपनी मर्जी की जगह पे मांगते हो, मर्जी के तरीकों से मांगते हो, नहीं मिलेगी। आज इंसानियत ने इत्मीनान पाने के लिए अपने घरों को कबाड़खाना बना लिया। कुछ ने शॉपिंग में इत्मीनान पाना चाहा, उनको इत्मीनान नहीं मिला। कुछ ने म्यूजिक के नशे में खुद को खबोना चाहा, नहीं डाल सके। इसी तरह आप देखेंगे कि आज इंसानियत इस इत्मीनान को पाने के लिए क्या नहीं कर रही, लेकिन नहीं मिल रहा। इत्मीनान रूह की कैफियत का नाम है, इसको समझ जाए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका दिल आपको गवाही देगा कि आप कहाँ हैं। इत्मीनान के जज्बात के कई शेड्स होते हैं, बस खुशी, सुकून, तहफ्फुज, एतमाद, पायदारी का एहसान। जितना आपका दिल इन जज्बात के अंदर मुलव्वस होगा, उतना ज्यादा आप अपने आप को मुतमईन पाएंगे। अल्लाह ताला ने ईमान के साथ इत्मीनान को जोड़ दिया, इसलिए कि ये दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। पहले इस अल्लाह के जिक्र को भी तो समझ लीजिए ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाही, अल्लाह का जिक्र क्या है? तो दो तरह से आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक है याद, रिमेम्बर, जैसे आप अपने जुबान में किसी को कहते तो मैं आपको याद ही कर रही थी। अब उसका ये तो नहीं मतलब कि आप उसके नाम की तस्बीह पढ़ रही थी, ख्याल आ गया ना, ध्यान चला गया, रिमेम्बर के मैंने माने में, ठीक है, हर वक्त अल्लाह को याद रखना। फिर दूसरा जिक्र जो होता है ना, वो जुबान से उसके नाम का विर्द है। हदीस में आता है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह कुरान को भी जिक्र कहा गया, सूरह हिजर आप पढ़ेंगे आयत नंबर 9 में आता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आयत नंबर 14 है सूरह हिजर की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना, तो उसे अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पैदा होता है, और जिसको अल्लाह की जात पर तवक्कुल नसीब हो गया, वो ना तो मुश्किलात में घबराता है और ना दुनिया की लज्जतों पे रीझता है, वो हर हाल में अल्लाह पर नजर रखता है। मेरा अल्लाह इस वक्त मुझसे खुश है कि नहीं, मेरे इस काम से मेरा अल्लाह तो नाराज नहीं है, वो अपना मुहासबा करता है। फिर उसके दिल को एक सुकून और इत्मीनान मिलता है कि नहीं, मैं खुश हूं, मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश है, और अगर लोग मुझसे नाराज हैं कोई बात नहीं, अल्लाह मुझसे नाराज नहीं है। ऐसा बंदा फिर जब इस नेमत को पा लेता है, तो फिर उसको किसी मौजजे की जरूरत नहीं होती किताब की तरफ आने की। अल्लाह के जिक्र से ईमान मिल रहा है, इत्मीनान मिल रहा है, मौजजात से नहीं मिलता। ऐसे लोगों को फिर करना क्या है कि वो अल्लाह की याद में अपनी जिंदगियों को कैसे लगाएं? ये तो नहीं हो सकता कि आप सारा दिन कुरान पढ़ें, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये तो हो सकता है कि आप अल्लाह को हर वक्त याद रखें। किसी से मोहब्बत होती है ना, तो इंसान उसको याद रखता है, हर वक्त उसके तरफ ख्याल होता है। इंसान अपने दिल पे उसको महसूस करता है कि कैसे मैं उसकी साथ देखूं, कैसे मेरा उसके साथ ताल्लुक जुड़े, कब मैं उसको मिलूंगी, यही कैफियत है। फिर इबादत, कभी तिलावत, कभी नफिल, कभी दुआएं, ये सब ईमान वालों की खुराक होती है। इनके दिल खराब चीजों से नहीं मिलते। फिर उनको अल्लाह के हुक्मों को मानकर बड़ी खुशी होती है, जो अल्लाह ने फरमाया, वो कहते हैं आपकी बात हमारे सारे अंगों पे, हमारा दिल खुश होता है। اس کے ساتھ پھر ایمان والوں کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں اپنے دل کا کیا معاملہ پاتی ہوں؟ اندر ایک گہرا سکون ہے، خوشی کا احساس ہے؟ اگر ہے نا تو پھر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس کے بعد وہ ریلکٹنٹ بھی ہو، شک میں آ جائے. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ دشمن ہم سب کا جو ہے، اس نے ہمیں دین کے راستے سے دور کیا، شک پیدا کیا. اور وہ شک اس وقت شک نہیں لگتا، یقین لگتا ہے. اور اس بات کے پردے میں انسان ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑتا ہے، اور پھر سوچتا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت بہترین فیصلہ کیا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حق سے دور ہوتے ہوئے بھی حق پہ سمجھنے لگتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے سکون کیوں ملتا ہے، اطمینان کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی اس کو اس لیے کیا. دیکھیے، جیسے بھی بات کی نا کہ معدے میں کھانا جاتا ہے تو معدے کو سکون ملتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ معدے کی خوراک کھانا ہے، لنگز یعنی پھیپھڑوں کی خوراک آکسیجن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں جاتی ہیں نا، اسی طرح ہمارے دل کی غذا، فوڈ آف دی ہارٹ، اللہ کی یاد ہے. بات واضح ہے؟ جو لوگ اللہ کی یاد سے دور ہیں نا، ان کے دل پریشان ہیں. پیچھے بات ہو رہی تھی یہ ہدایت کے مقابلے پہ معاملے میں آپ کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ ابھی انہوں نے من اناب کی کیفیت نہیں اختیار کی. اگر آپ لفظ اناب کو اطمینان سے جوڑ لینا تو بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے. اور وہ کیا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اس کی طلب ہوتی ہے. بس آپ دیکھیے، آپ گھر سے نکلیں سبز رنگ کا کوئی کپڑا لے کر، آپ کو اس کی میچنگ چاہیے، مل جائے گی آپ کو سبز رنگ کی میچنگ مل جائے گی، کیونکہ آپ کو سبز رنگ کی طلب تھی. ہو سکتا ہے اسی دکان پہ 8-10 سسٹرز اور بھی ادھر ادھر سے آئی ہوں، وہ سبز رنگ کی طرف نظر بھی نہیں بھریں گی. ان کو نہیں دکھا، آپ کو کیوں دکھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کپڑا لیتے ہیں تو گھر سے سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ رنگ کا کپڑا لوں گی، یہ نہیں ہے یا یہ لینا ہے یا وٹ ایور. آپ اس دکان میں جا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری دکان میں سے صرف اس رنگ کے کلرز نہیں دکھ رہے ہوتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، یعنی چھوٹے سے مراد کی ایسی لاشوری کی عمر ہے، تو گاڑیاں آتی رہتی تھی، پھر گاڑی بدلی تو ایک گاڑی سرخ لی نا ابو نے. جب ہمارے پاس ریڈ گاڑی تھی تو ہم بچے تھے نا، تو گاڑیوں میں پیچھے بیٹھ کے دیکھتے تھے گاڑی چلتے میں، تو ہم دیکھتے تھے وہ بھی ریڈ گاڑی، وہ بھی ریڈ گاڑی. تو مجھے آج بھی اپنے لاشور میں وہ جملے یاد ہے، ہم بچوں میں سے کسی نے بولے تھے کہ ابو سب نے ریڈ گاڑیاں لے لی ہیں، اس سے پہلے کبھی ریڈ گاڑی نہیں سوچی تھی، کیونکہ اپنی گاڑی ریڈ ہوئی تو روڈ پہ چلتی ہر گاڑی ریڈ دیکھی. بس یہی ہے مننا، جس کو ہدایت کی طلب ہوگی وہ اس کو ملے گی. آپ گھر سے گئے ہی نہیں ہدایت خریدنے تو ہدایت مل جائے گی؟ آپ تو گئے تھے فرنیچر خریدنے کہ آپ کو کپڑے مل جائیں گے، امپاسبل ہے. گھر والے بھی کہیں گے کہ آپ تو گئی تھی فرنیچر لینے، کپڑے کیسے لے آئیں؟ تو یہ آج ہم اپنے دل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ دل چاہتا تھا کہ اللہ کو پائے، اللہ کے راستوں میں آئے، اللہ کی طرف آئے. لکھا کرے، آپ بہت دیکھتے ہیں نا تو اس سے مجھے تھوڑا سا کانشیسنس فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد جو ہوتی ہے نا، اس کو دل کی خوراک بنا کے دیکھیں، آپ کو یہ پیغام ملے گا کہ نشانی مانگنے والوں، ہدایت پر آ کر تو دیکھو، نشانی تمہیں اندر ملے گی. تم اپنے دل سے پوچھو گے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. ظلم کر کے دوسروں کو آپ خوش نہیں رہیں گے، باطل پر خوش نہیں رہیں گے، اللہ سے دوری پر آپ کو سکون نہیں ملے گا. جیسے کھانا کھا کے جسم آرام کرتا نا، اس طرح دل اللہ کی یاد سے آرام پاتا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کلاس میں نیند کیوں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. آپ دیکھیے کہ بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، چاکو چبند صبح سے لگی ہوئی. آپ جو ہی دوپہر کا کھانا کھایا، ذرا سودا ہوئی تو کیا لگتا ہے، आपको जुमाइयां आने लगती हैं, क्यों? कि आपके पेट को खाना मिल गया तो वो सोना चाहता है। और साइंस कहती है कि जिस्म क्यों सोता है, क्योंकि उसको खाना हजम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम काम दूसरे भी करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन उधर लगती है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए ये जो मसनून अमल है कैलूला 10-15 मिनट का, उसमें हकीकत है कि इंसान के असाब के लिए बहुत सुकून है। अब जब जिस्म को खाना मिला तो वो सोने लगा। अब हमारा हाल क्या? आप रात को जाग रहे थे, नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो खत्म हुई है। अब दोबारा क्या शुरू करें, अब क्या करें? अब कहते रात आंखों में कट रही, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब रात को नींद नहीं आती तो लोग आपको मशवरा देते, अच्छा आप जरा कोई अच्छी सी फिल्म शुरू कर दें। इधर आपने फिल्म चलाई, 3 घंटे गए। आंख कब कब होश आता है? जब फजर में 1 घंटा रह गया, अब सोएंगे फिर? हाँ, आंखों से नींद पट पट गुजर गई। इसके बरक्स जब रात को नींद ना आए, और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही ना, उठें, वजू करें और जाए कुरान खोलें। 15 मिनट से ज्यादा नहीं आप जाग सकेंगे, आप यूं सोएंगे, कुरान खोलते नींद आती। क्यों? कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। जिस्म को खुराक मिले तो वो सोता है। इस तरह जब हमारी रूह को खुराक मिलती है तो हमारी रूह को इत्मीनान मिलता है। ये है वो कैफियत जिसको आप कुरान की महफिल में महसूस किया करें। इर्द गिर्द से बेनियाज, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के अंदर झांक के देखें कि क्या मुझे कुरान पढ़ने के बावजूद तो बेसकूनी नहीं है। ये बड़ी फिक्र की बात है। ये तो ऐसे ही कोई कहे कि खाना तो खाती हूँ पेट नहीं भरता, सो के तो उठती हूँ लेकिन सुस्ती दूर नहीं होती, थकन दूर नहीं होती। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान जब अपने रब को पाले, उसकी उसको अपनी उसकी अजमत के साथ पाले, फिर उसको सुकून ना मिले। आप देखिए कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। एक तो बात ये ना कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, फिर हमें इत्मीनान मिलता है। इसको दूसरी तरफ भी समझ लीजिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्रिया करो। आज इंसानियत को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अल्लाह ने छोड़ा हुआ है। जब अल्लाह इंसानों को तनहा छोड़ देता है ना, तो उसको सुकून नहीं मिलता। कैसे? छोटा सा एक मिसाल से समझिए। आप देखिए, एक बच्चा किसी भी 2 मरले के घर में रहता है, कपड़े भी फटे हुए, कोई पता ही नहीं कपड़े क्या पहने हैं। छोटा सा न्यू बोर्न बेबी है या दूध पीता बच्चा है, जिस्म पे कोई मैचिंग कपड़े नहीं, कुछ नहीं, वट एवर जो भी चाहिए, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में। आप उस बच्चे के चेहरे पे क्या देखेंगे? खुशी, गुलकारियां मरेंगे। उसको क्या लगे मैंने मदर केयर्स का पहनना है या मैंने जॉनसन्स का पहनना है या बेबी सेंस का पहनना है? उसको ये पता है कि मेरी माँ की गोद में मैं हूं। अब इसके ऑपोजिट आप सोचिए, एक बच्चा किसी बहुत पौश किस्म के महल में, घर विला बंगला जिसको भी समझ करें, जिसको भी आप सोच सकते हैं कि जिसके अंदर एक इंसान अपने आप को पता है। अब वो बच्चा जिसको हर तरह की आसाइश हासिल है लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं है, तो वो बच्चा खुश होगा? आप उसको टॉडलर दें, आप उसको न जाने बाहर की बनी हुई 4, 6, 10 चीजें झुंझने दें, वो क्यों रोता है? किसको माँ चाहिए ना। बस इसी को समझ ले, अल्लाह हमें याद रखता है ना तो हम खुश रहते हैं, और जब अल्लाह हमें छोड़ देता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस याद के साथ हमारी खुशियों को रखा हुआ है। अगर हम अपने आप को इसके साथ पालेंगे, आप देखेंगे खुशी मिलेगी। इत्मीनान रूहानी कैफियत का नाम है। जिस्म की जरूरत जरूरत पूरी होती है ना तो ये इत्मीनान नहीं होता, ये आराम होता है। लिख के देख ले लफ्ज, आराम लग्जरी रेस्ट। आप रेस्ट कर ले, बहुत थके हुए थे, थोड़ी देर आप लेट गए, आपने आराम कर लिया, लेकिन दिल तो नहीं खुश होता आराम के बाद भी, अगर दिल को कोई तकलीफ लगी हुई हो। इसी तरह आप देखिए, आपको भूख लगी, खाना खा लिया, दिल को गम लगा होगा। असल में ये सब कुछ कब होगा? जब हम अपनी रूह को पूरा करेंगे, उसके मुतालबे पूरे करें। इंसानों ने आज इत्मीनान कहां ढूंढा? कंज्यूम करो, पैसा खर्च करो, बाजार भर दिए, 10 किस्म के सीरियल है, चूज योर चॉइस, अपनी चॉइस का चूज करो। आज लोगों ने कुछ चीजों में खुशी चाहिए। नंबर 1, खूब शॉपिंग करो। अब आप सोचिए, जो बंदा शॉपिंग करके आता है, क्या उसको इत्मीनान मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आज 200 400 पाउंड खर्च कर रही हूं, दैट्स गुड, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। कंज्यूम करने से सिर्फ दुनिया की चीजें मिलती हैं, और इत्मीनान तो यहां की चीज ही नहीं है। फिर आप देखिए, बल्कि और मुसीबत पड़ती है जब इतनी चीजें जमा हो जाती हैं, हमारे लिए जगह ही नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने गुल खिले मेरे आशियाने में कि कहीं जगह ना मिली मुझे, यानी इतने गुल खिले बाग में कि कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। आज हमारा ये हाल है, इतनी दुनिया जमा हो जाती है कि हमारे लिए जगह नहीं रहती घर में। हटा के चीजें थोड़ी सी रखनी पड़ती हैं बेड पे, जहां मैं सो सकूं, क्योंकि सारा बेड तो कपड़ों से भरा हुआ है। पकाऊं क्या इतना, जो सामने वही पका लुआ, अब कौन उलट पुलट करके फ्रिज फ्रीजर को खोले? ये हाल हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि लोगों ने भारी पर्दे, फर्नीचर, उनका नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे भारी पर्दे मिल गए मैं बहुत मुतमईन हूं, फर्नीचर अच्छा, बर्तन खूबसूरत, नहीं मिला, जहर लगती है वो चीजें। हकीकी खुशी तो लोगों के पास है ही नहीं, हम उनसे मांगते हैं। मस्नूई मुस्कुराहटों के पीछे कभी तफक्कुरात की झलकियां देखा करें, झुरियां पड़ जाती हैं जवानों के चेहरों पे। इस दुनिया के अंदर पूरे पूरे हाथ उनके डूबे होते हैं, लेकिन चेहरों पे परेशान है। बाहर से आप देख सकते हैं आज लोगों ने क्या नहीं किया। हर चीज सजा लो, मैचिंग कर लो तो बहुत फोकस होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सच है कि आपके कमरे में अगर 6 7 8 रंग की चीजें हैं, पर्दे एक रंग के, सोफा दूसरे का है, बेडशीट तीसरे की है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप सब एक रंग का कर लें, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन क्या ये सब होते करते ने के बावजूद सुकून मिला? आप उसको अवॉइड कर लें, आपके अंदर आग लगी भी आपको सारा कमरा काला लगेगा, आपके अंदर जज्बात उभरे में आपको सारा रंग जो है सुर्ख दिखेगा, खून उतरता हुआ दिखेगा आपको। एक चीज जिससे सुकून मिलना था वो अल्लाह की याद है, आज उसको इस डिक्शनरी से निकाल ही दिया। आप आज देखिए कि जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं, हमसे मुराद दुनिया में चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, हम तो उन्हीं को कहेंगे ना अपना, लोगों को नहीं मिला। फिर एक चीज जिसमें लोग और सुकून लेते हैं, ढूंढते हैं, मिलता कोई नहीं, वो क्या है? नशा। आप दो किरदार बना ले, ऐसे लाइन लगा ले अपने नोट्स में, एक परेशान शख्स है, यानी दो डिप्रेशन के मरीज आपके सामने आते हैं, एक को आप फ्राइड के नजरियात की रोशनी में डील कर रहे हैं, जिसमें खुदा का नाम ही नहीं है। कैन यू बिलीव कि जब अल्लाह का नाम ही नहीं है किसी चीज में, तो आपको सुकून कहां से मिलेगा? आज इस्लाम के नाम पर साइकोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो मैं सोच सकती हूं कि उस बंदे को सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाएगा। एक नया सब्जेक्ट शुरू करने की जरूरत है बच्चों की स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जिसको इस्लामिक साइकोलॉजी का आप नाम दें। फ्राइड ने बहुत कुछ बताया, उसमें 30% ठीक होगा, 70% ठीक कैसे हो सकता है? देखिए, वो खुदा को मानता ही नहीं है, तो वो साइकोलॉजी जिसमें अल्लाह का नाम ना, उसका मतलब पता क्या है? जिसको एक क्लास बोलूंगी तो आप हंसेंगे कि डिहाइड्रेटेड वाटर। कभी ये कोई कह सकता है कि ये पानी है जिसमें पानी की कमी हो गई? इम्पॉसिबल है ना। पानी में पानी ना हो तो वो प्यास क्या बुझाएगा? तो वो साइकोलॉजी जिसमें पैदा करने वाले का नाम ना हो, वो इंसानियत को खुशी कहां देगी? इसके लिए हमारा ब्रेन चाहिए, मुस्लिम ब्रेन, जो कुरान भी पढ़ चुके हो, फ्राइड की साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हो, फिर उसकी रोशनी में लोगों को ट्रीट करें। आपको तो पता नहीं, शायद कम इस मौका मिलता होगा, मैं सोचती हूँ जो डिप्रेशन के मरीज नॉन मुस्लिम से आज इस दुनिया में है, चले हमें तो फिर भी कुरान से, दम दरूद से कुछ ना कुछ हम अपने अकीदे के मुताबिक सुकून ले ही लेते हैं तकलीफों में, ये गरीब किधर जाते हैं? फिर नुकसान क्या होता है कि वो कभी नशे में आते हैं, कभी कुछ, कहीं कुछ। चलिए करके देख लीजिए, दो डिप्रेस मरीज हैं, एक वो है जिसको दुनिया और ये सब कुछ, और दूसरी तरफ अल्लाह की जात। पहले ने नशे में सुकून ढूंढा, क्या होगा? नशा तरफ सुकून खत्म, फिर नशे के साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। नशे की वजह से उसका स्टमिक अपसेट होगा तो मैदा भी खराब होगा। शराब, कहते हैं ना कि शराब के नशे में धुत पीते हैं, पी लीजिए आप, कितने दिन पियेंगे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए कि ना उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा इस गम का, ना रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि जो ही नशा खत्म और अजियत होगी, जो ही गम खत्म नशा खत्म, गम 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 शुरू। ये सिर्फ फरार की कैफियत होती है। लोग कहते हैं तेज म्यूजिक सुन लो, तीसरा इलाज कोई कहता चलो म्यूजिक के नशे में डुबो दो। चलो डुबो, सर में दर्द भी शुरू हो जाएगा जो नहीं हो रहा था। लिखते जाइए जिस चीज में, उसको मॉल में छोड़ाओ, बाजारों में छोड़ाओ, उसको वीडियोस दिखाएं, वो और हीरोइनों को देख देख के जले कुड़ेगी, ये इतनी प्यारी है मैं ऐसी क्यों नहीं। इस फिल्म में तो हीरो इतना प्यार करता है, देखो मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया। यही काम है ना आज के दौर के, और क्या गम है इनको? आटे चावल का गम तो नहीं है या कर्जों का गम है? नतीजा क्या होता है कि ऐसी चीजों में मुलविस शख्स जो होता है वो अपने आप को और ज्यादा डिप्रेस फील करता है दूसरों से टैली करके। चलिए अब आप दूसरी तरफ लीजिए, एक शख्स बच सकता है जिंदगी में। डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, सबसे बड़ी वजह तो ईमान की कमी है। ये वो जरा लिस्ट बताने से पहले आपको वजह भी तो बता दूं कि डिप्रेशन होता किसको है। लिख लीजिए, अगर डिप्रेशन है तो ईमान नहीं है, ईमान और डिप्रेशन साथ नहीं चल सकता। सहाबे कराम को मिसाल बना लीजिए, क्या कुछ नहीं उन पर हो गुजरा। 70 रिश्तेदारों की लाशें उनको इकट्ठी उठानी पड़ी उहद में, कोई एक छोटी सी रिवायत ला के दिखा दे कि उसको करते हुए 2-4 सहाबा डिप्रेशन में चले गए। वो डिप्रेस नहीं होते थे। मक्का में इल्जामात, बोहतान, कतई रहमी, तलाकें, घर में झगड़े, बीवियां शोहर जुदा, बच्चे माँ बाप के नाफरमान, कहीं डिप्रेशन नहीं। कभी आप नहीं पढ़ेंगे कि उम्मे सलमा डिप्रेशन में चली गई जब उनको उनके बच्चे और उनके शोहर से जुदा कर दिया गया। जैनब डिप्रेस हो गई जब उनको उनके शोहर से अलग कर दिया गया, आप नहीं सुनेंगे। गजवाए अहजाब होता, अल्लाह के नबी बुलाते भाई किधर हो, आओ जल्दी से, खंदक होते, पता चले एक डिप्रेशन का मरीज हो गया, एक स्ट्रेस में चला गया, एक टेंशन में चला गया, एक को स्ट्रोक हो गया। कभी सुना आपने? थोड़ी सी सीरत तो अब आपकी भी दोस्तियां हो गई है ना। तबूक के सफर में कभी किसी को डिप्रेशन हुआ? क्यों नहीं होता था उनको डिप्रेशन? इसलिए कि उनके अंदर इत्मीनान था, उनको अजर की उम्मीद थी। देखिए उम्मीद जो होती है ना वो इंसान को टूटने नहीं देती। आज हालात खराब है, कल ठीक हो जाएंगे। नतीजा क्या होता है कि इंसान खुश होता है। इमाम इब्ने तैमिया को जेल में डाल दिया गया और कहते थे इन्ना जन्नती माई, मेरी जन्नत मेरे अंदर है, जेल में छोड़ो कुएं में डाल दो। क्यों नहीं डिप्रेशन हुआ हजरत अबू हजरत यूसुफ को कुएं में? हजरत याकूब अपने बच्चे की याद में डिप्रेस क्यों नहीं हो गए? मदीना में क्यों कोई पागलखाना नहीं था? क्यों कोई साइकेट्रिस्ट वहां नहीं पलता था? ये तो आज से कोई 20 साल पहले चले तो हमारे पाकिस्तान में भी नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे, कि ये साइकाट्रिस्ट और फुलाना थेरेपिस्ट और फुला फुला और दिस फिजियो शिजियो। ये आज के इस लादीन और बेखुदा मजहब और इस कल्चर के तोहफे हैं। दिल को चाहिए सुकून, अल्लाह की याद, उससे दूर। आज मैं रोने को दिल चाहता है वल्लाही, अगर वाकई ये बात सच ना हो कि अल्लाह पे कि जो फिर नहीं जिसको हिदायत मिलनी फिर ना मिले, मेरा तो कई ऐसे लोगों के हालात देखकर दिल दुखी हो जाता है कि जिनको जरूरत इधर आने की है और वो डिप्रेशन का मरीज बन के घरों में पड़े। कोई उठा के ले आए ना उनको जबरदस्ती, जैसे हॉस्पिटलों में भी तो ले जाते हैं ना, एम्बुलेंस बुलाते हैं तो फिर मरीज जाता है ना। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, आप उनको ले गए ना तो आज वो पढ़ गए हैं ना माशाल्लाह। मैं कहती हूँ उठा के लाना पड़े ना किसी को तो ले आइए, हम कहते नहीं इनको आराम करने दो, ये डिप्रेस है, ये थके हुए, ये उदास है। अल्लाह की कसम खाऊंगी एग्जैजरेशन से, अल्लाह मुझे बचा ले। 101 बीमारियां आज के दौर की गिन लें, जिसमें साइकिक, नफसियाती, जिस्मानी सुस्ती, आजजी और बदतमीजी और गुस्ताखी और जो आज के यंग्स और ओल्ड सब के मसले, सब का इलाज एक है कि ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल कुलूब। आपके नमाजें तो हम पढ़ते हैं, खाक नमाज है जिसमें अल्लाह से एक दफा भी सामना नहीं होता। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, कौन है भाई तू, कौन है? बस अम्मा ने सिखाया था बचपन में ये नमाज में पढ़ना। अगर हमारी नमाज भी जिंदा होती ना आज तो कम अज कम डिप्रेशन ना आज होता। एक भी कोई मर जाता है खानदान का, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई आपका क्या ले गया, आपको तो दे ही गया। जाने वाला तो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, अगर उसकी जिंदगी की बिलोंगिंग्स है, माल ना छोड़े ना तो जोड़ा जोड़ा बट जाता है बहनों भाइयों का। ये मेरी बहन को दे देना ये उसका जोड़ा है, ये मेरी सास की जूतियां ये उसके कड़े हैं, चीजें दे के ही जाते हैं, आपसे ले के कुछ नहीं जाते। तो लिहाजा सुकून वहां ढूंढे जाना है। आप पता है कि एक इतना बड़ा शख्स था, इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, एक इतने बड़े जजीरे का मालिक था, स्कॉर्पियो उस जजीरे का नाम था, उसकी बेटी करोड़ों के ये मालिक, और आखिर में उसने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि दिल अल्लाह की याद से खाली था। एक हदीस का खुलासा है कि लोग दुनिया में आराम और चैन ढूंढते हैं जबकि वो अल्लाह की याद में। आप सारा वीकेंड उछलें कूदें, मस्ती करें, खाएं पिएं, कुछ भी करें, मैं कसम खा के कह सकती हूं, जो सुकून आपको कुरान की क्लास में मिलता है वो आपको किसी खुशी में नहीं मिल सकता। जाएं आप इस कुरान को छोड़ें, फिर देखें आप किधर धक्के खाते हैं। अच्छे कपड़े भी खुशी नहीं देंगे। मैंने इतने प्यारे कपड़े पहने भी लड़कियों की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे, छोटी सी बात पे। ये चीज ऐसे सोची थी, ये कांटा टूट गया, ये बुंदा टूट गया, ये बाली टूट गई है, इस पे सारी सारी मेहनत जाया हो जाती है। जिसको आप कहते हैं कि ये बहुत इस वक्त प्यारा लग रहा है, वो उससे पूछिए उसके दिल में उस वक्त कितने गम है। तो लिहाजा हम अपने ऊपर जुल्म करने से बाज आ जाए। अल्लाह बिजिक्र अल्लाह तत्मइन्नल कुलूब। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि हम जिस्म से नहीं बने, हमारी रूह भी है। सूरह बनी इसराइल आयत 85 में पढ़ेंगे, वयसअलूनक अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुले रूह मिन अम्री रब्बी, रूह तो अल्लाह का हुक्म है। तो इस रूह की भी हिफाजत करनी है, सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करनी। अब जब किसी के दिल को इत्मीनान मिल जाता है तो उसको क्या मिलता है? आयत 29, अल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, तूबा लहुम, उनके लिए मुबारकबाद है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, वह हुस्नुमाब, और लौटने का बहुत अच्छा मुकाम है। क्या मिलता है ईमान और अमल साले के साथ? तूबा और हुस्नुमाब। सवाल पैदा होता है कि तूबा क्या है? तूबा का लफ्ज तीब से है, तीब कहते हैं पाकीजा चीज को। अगर आप तफसीर में इसके मानी देखें ना, तो एक लंबी लिस्ट है, खैर यानी भलाई के मानों में कह लें, हुस्ना, करामत, रश्क, और जन्नत में मखसूस दरख्त या मुकाम का नाम है। और अगर आप इसकी डिक्शनरी से एनालिसिस कर लें तो तीबा की जमा है ये। तूबा क्या है? तीबा की जमा। और तीबा कहते हैं आंखों की ठंडक को, हर वो चीज जो बंदे की आंखों को ठंडा कर दे उसको तूबा कहते हैं। हदीस में आता है कि जन्नत में एक दरख्त है, चंद रिवायात आपके साथ शेयर करूंगी, उसी में आप देखेंगे कि सारे मानी आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तूबा और तीबा का। बस कहते हैं कि तूबा से मुराद मुल्क मुल्क हबश भी है, हबशा का मुल्क भी है, और बास कहते हैं ये जन्नत का नाम है। रिवायत सुन लीजिए एज इट इज। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जन्नत की जब पैदाइश हो चुकी उस वक्त जनाबे बारी ताला ने यही फरमाया था। कहते हैं कि जन्नत में एक दरख्त का नाम भी तूबा है, सारी जन्नत में इसकी शाखें फैली हुई हैं, हर घर में इसकी शाख मौजूद है, अल्लाह ताला ने इसे अपने हाथ से बोया, लूलू के दाने से पैदा किया, और अल्लाह के हुक्म से बढ़ा और फैला। यानी बाकी दरख्तों को तो और असबाब के साथ फैलाते हैं ना, ये अल्लाह के हुक्म से ही फैलता है। इसकी जड़ों से जन्नती शहद, शराब, पानी और दूध की नहरें जारी होती हैं। एक मरफू रिवायत, मरफू किसको कहते हैं? जो बहुत स्ट्रॉन्ग सुन्नत के साथ नबी सल्लम तक पहुंचती है। तूबा नाम का जन्नत में एक दरख्त है, 100 साल के रास्ते का, यानी उसके नीचे सवार 100 साल चलता जाए तो उसका साया नहीं खत्म होता। और इसके खोशियों से, खोशे समझते हैं जो आगे उसके मोटे मोटे वो गुच्छे कह लें या जहां से फल निकलता है, इसके खोशियों से जन्नतियों के लिबास निकलते हैं। जैसे दुनिया में रेशम है ना, तो रेशम की तरह तूबा है जन्नत में। मुसनद अहमद की रिवायत है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, जिसने आपको देख लिया और आप पर ईमान लाया उसे मुबारक हो, यदि खुश हो रहे थे कि हमने आपको अपनी आंखों से देख लिया। आपने फरमाया, हाँ इसे भी मुबारक हो और उसे डबल मुबारक हो जिसने मुझे ना देखा और मुझ पर ईमान लाया। ये हमारी बात है अगर अल्लाह हमें ईमान दे दे। उस शख्स ने पूछा, तूबा क्या है? آپ نے فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں. بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا. روایت میں کہ چال بھی تیز اور سواری بھی تیز، یعنی کہ سواری بڑی سلو ہے، تیز سوار اور تیز سواری، پھر بھی یہ سب فاصلہ ختم نہیں ہوگا. بخاری کی روایت میں وَذِلِّ مَمْدُود، سورت واقعہ میں ہم پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں بھی یہی بات پیش کی گئی. حدیث میں کہ 70 سال یا 100 سال، اور اسی کا نام شجرت الخلد بھی ہے، ہمیشگی کا درخت. سدرت المنتہا کے ذکر میں آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک شاخ کے نیچے ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، 100 سال تک، اور 100 سوار اس کی ایک ایک شاخ تلے ٹھہر سکتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ہے کہ 100 لوگ ایک وقت میں اس کی ایک شاخ کے نیچے ٹھہر سکتے ہیں. اس میں سونے کی ٹڈیاں ہیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو طوبہ کے پاس لے جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا، جس شاخ کو چاہے پسند کرے. سفید، سوچئے ذرا کیسا درخت ہوگا، سفید شاخیں بھی ہیں اس میں، سرخ بھی ہیں، زرد بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں، جو نہایت خوبصورت، نرم اور اچھی ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں طوبہ کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے بہترین چیزیں ٹپکا، تو اس میں سے گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے، سجے سجائے اور زین لگائے ہوئے، کسے کسائے اور بہترین عمدہ لباس. کوئی انکار کر سکتے ان چیزوں کا؟ آج دنیا میں کہاں سے آتا ہے؟ کبھی ریشم بنتا دیکھا آپ نے؟ عقل دنگ رہ جائے اگر آپ اس کو دیکھیں کیسے ایک جانور کے منہ کا لعاب اللہ تعالیٰ اس طرح لے کے آتے ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ سارے حساب کتاب بھگتا کے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ، وہ مانگتا جائے گا اور اللہ کریم دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا. اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی کہ اب میں کیا مانگوں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اب اور کیا مانگے؟ جب اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو اب اللہ خود اسے یاد دلائے گا، یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگے گا اور پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب میں نے تجھے دیا، اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ فرمایا. صحیح مسلم کی روایت میں حدیث قدسی ہے، میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. سوچے سب اگلے پچھلے انسان بھی اور جن بھی، اور مجھ سے دعائیں مانگیں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوال پورے کر دوں، یعنی جو مانگ رہا اس کو دیتا جاؤں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اللہ اتنی چھوٹی سی چیز اس سے مانگ رہی ہوں، یہ کوئی چیز ہے؟ تو بہت زیادہ دے رہا ہے، میرا دامن اتنا ہے، بس مجھے اتنا چاہیے، میرا اسی میں گزارا ہو جائے گا، اللہ مجھے اتنا دے. واللہ ہی شرم آتی ہے کبھی کبھی اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے، اللہ اتنی چھوٹی سی چیز اس سے مانگتی ہوں. جیسے آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے کہ مجھے 10 پینیز دے دو پلیز، تو آپ سوچیں گے نا، ہائے بادشاہ سے مانگا تو 10 پینیز مانگی، تو ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا. وما قدر اللہ حق قدری. ایک اور کال ہے خالد بن میدان کا. خالد بن میدان کہتے ہیں جنت کے ایک درخت کا نام طوبہ ہے، اس میں تھن ہے جن سے جنتیوں کے بچے دودھ پیتے ہیں، کچے گرے ہوئے بچے، یعنی جو سٹل بون ہوتے ہیں یا ابارشن ہو جاتے ہیں، وہ بچے اس سے دودھ پیتے ہیں اور جنت کی نہروں میں ہیں قیامت کے قائم ہونے تک، پھر 40 سال کے بن کر اپنے ماں باپ کے پاس جنت میں آئیں گے. تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ میرے رب کی عطا غیر محدود، اللہ کی عطا بہت بڑی ہے، لینا تو اسی سے ہی ہے، اگر اللہ سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ اب یہ ساری باتیں سن کر اب آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی دھان کے بان مطالبے، جو پیچھے بات ہو گئی ہے نا، اب اسی میں سے آگے ان کے وہ مطالبے جو تھے اس کا تذکرہ ہے کہ کتنا ستایا لوگوں نے میرے نبی کو، कितना खुपाया, कितना प्यार था अल्लाह के नबी को अपने लोगों से, लेकिन लोग जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें देते थे। कैसे? और अल्लाह अपने नबी को पिछले नबियों की कहानियां सुनाते हैं। आयत 30, कजाली कर सलना कफी उम्मा, ए नबी इसी तरह हमने आपको भेजा एक ऐसी उम्मत में, कद खलत मिन कबलीहा उममुन, जिनसे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। यानी डोंट वरी, जो हालात आपके साथ है ना, ये पहले भी हुए, और भी नबी आए। क्यों आए इसको हाईलाइट कर लीजिए, लितत्लुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक, ये है मकसद, बहुत सारी चीजों में एक मकसद, ताकि आप तिलावत करके सुनाएं इन लोगों को वो किताब जो हमने वही की है। कितनी बड़ी दलील है इस किताब के अल्लाह की तरफ से होने की, कि ये किताब हमने नाजिल की है, आपने लोगों को सुनानी है। किनको? जिनका हाल क्या है कि वहुम यकफुरून बिर्रहमान, इन लोगों को जो हमने वही की है आपकी तरफ, हालांकि ये लोग रहमान का इनकार कर रहे हैं। यह लफ्ज देखिएगा, रहमान है, अरब के लोग लफ्ज अर्रहमान से वाकिफ नहीं थे। मुश्रिकी ने मक्का ने अल्लाह नाम के कई बिगाड़े हुए नाम रखे हुए थे, जैसे लात अल्लाह की फीमेल थी नौज बिल्ला उनकी नजरों में, मनात अल्लाह के नाम अल मन्नान की फीमेल थी, उज्जा अल्लाह के नाम अल अजीज की फीमेल थी नौज बिल्ला, जैसे मिसिस का साइन है। लफ्ज रहमान उन लोगों में नहीं था, इसलिए वो इस नाम से बहुत चिढ़ते थे। आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत मरियम में, तो हर एक सूरत में बहुत ही दफा सूरह रहमान का लफ्ज आता है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को तसलियां दे रहे हैं कि आप रहमान की बातें करते हैं, लोग आपसे भिदकते हैं कि वह मर रहमान, सूरह फुरकान आयत 60 में हम पढ़ेंगे, कहते थे वह मर रहमान, कौन सा रहमान है। हत्ता कि आपने वाक्य, आपको याद होगा कि खुदैबिया का जब लिखा जा रहा था मुआहदा, तो आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहने लगे लो देखो हमें तो कहते हो कि एक रब को मानो, तो खुद पहले अल्लाह फिर रहमान फिर रहीम, तीन खुदाओं की बात करते हो, मिटाओ इसको। अल्लाह के नबी ने बगैर किसी झगड़े में पड़े सब कुछ काट के बिस्मि रब्बी लिख दिया, जो तुम खुश हो लो, तुम ना मानो लेकिन वो रहमान रहीम है। जिनको ईगो का प्रॉब्लम नहीं होता वो छोटी छोटी बातों पर बिफरते नहीं है। यही हालात इधर हुए कि इन्होंने तो अल्लाह के नबी को इतना सताया, आप इनको कह दीजिए कुल हुआ रब्बी ला इलाहा इल्ला हुआ, कह दीजिए वो मेरा रब है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ मेरा लौटना भी है। यानी आप इनकी बातों से अब परेशान ना हो, डिसहार्ट ना हो, ये ऐसे लोग हैं कि जो आपको सताने के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो आप परेशान ना हो, इनको कर दीजिए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कभी किसी को लफ्ज अर्रहमान से भी चिढ़ हो सकती है। चलिए अल कहार से तो हुई, अल जब्बार से तो हुई, अकल के साथ सोच रहे हैं, हालांकि उन नामों के अंदर भी बड़ी डेलिकेसी है। किसको चिढ़ होती है अर्रहमान से? जिसको कुरान से चिढ़ है। देखिए सूरत अर्रहमान जो लोगों को इतनी प्यारी है, कैंसर के मर्ज के लिए उसको पढ़ते हैं, बेटी की शादी के रिश्ते के लिए उसको पढ़ते हैं, दुल्हनों पे उसको पढ़ते हैं, टीवी पे उसकी वीडियोस चलती हैं, खूबसूरत तस्वीरों के साथ उसको कई जगह नेट पे दिखाते हैं, लेकिन शुरू किससे होती है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह के रहमान होने की दलील क्या है? कि उसने कुरान नाजिल किया, और ये उसका रहम है कि हम इस कुरान की महफिल में बैठे हुए। तो जिसको कुरान पर एतराज है उसको रहमान पर भी एतराज होगा। अब आगे उनके जो मुतालबे मैं आपको बता चुकी हूँ, रिवायत सुना भी चुकी है, उसका जिक्र आयत 31 से आगे, वलौ अन्ना कुरआनन सुज्जिरत बिहिल जिबाल, नंबर 1। और अगर होता कोई ऐसा कुरान जिसके जरिए से पहाड़ चल पड़ते, जैसा कि इनका मुतालबा था कि पहाड़ हटे ताकि मक्का शहर खुला हो जाए, और कत्तियत बिहिल अर्दू, या जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते, यानी जमीन फटती और उसमें से नहरें निकल आती, और कुल्लिमा बिहिल मऊता, या फिर इसके जरिए मुर्दे भी कलाम करते, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुसई को जिंदा कर दो हमारे जो बुजुर्ग हैं, ताकि हमें आके बताएं कि नबी जो है वो सच्चे हैं और हम मान जाएं। क्या लग रहा है ये सारे मुतालबे? हिस्सी मुतालबे। ऐसे नहीं लग रहा किसी शोबदाबाज के पास बैठ के, अच्छा जरा करतब तो दिखाओ, जरा दिखाना तो सही, दिख लें। सारी जिंदगी आप को फायदा देगा कि शोबे दिखाकर हिदायत देना अल्लाह का काम नहीं है। ये कल तो ये अजीबोगरीब से मुतालबे करते थे, आज भी लोग ऐसे ही शोबे दिखाते हैं। अच्छा मैं कुरान में आऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, अच्छा अगर ठीक ना हुई तो फिर उसका तो कुरान खराब है, अच्छा मैं आऊंगी तो मेरे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, ये भी शोबे होते हैं। कुछ नहीं होगा, किसकी औकात है किसी को इस सोच के साथ इधर बुला ले कि आप आ जाएं आपके सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमें क्या पता पीछे अल्लाह के साथ किस मामले में टसल लगी हुई है, तो हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेते। आके देख लीजिए, आजमा के देख ले, अमूमन तो ऐसे ही होता है, आपके साथ क्या होगा ये अल्लाह को पता है। पिछली किसी किताब में भी इस तरह अल्लाह ने नहीं दिखाया था कि ये करो तो वो करो, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं कि तुम्हारे ये मुतालबे बेकार मुतालबे हैं। कोई किसी डॉक्टर के पास जाके कभी वकील वाली बातें उसे पूछ सकता है? तो नबी होते हैं, शोबदेबाज थोड़ी होते हैं। और रह गई बात कि ये जिन मौजों की बात कर रहे हैं ये तो बड़े छोटे हैं, कुरान ने तो इससे भी बहुत बड़ा मौजा दिखाया कि इनके दिलों की जमीन को फाड़ कर उसके अंदर से खैर और ईमान के चश्मे फोड़ दिए। तो किताब का मौजा बहुत बड़ा मौजा है, यहां लफ्ज कुरान आया है। ये कुरान हमारे इस कुरान के लिए भी है। इसी तरह बुखारी की रिवायत में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने जानवर को तैयार करते, यानी इतनी थोड़ी सी देर में कि वो जानवर चारा खाता तैयार होता, इतनी में देर में वो पूरा कुरान पढ़ लेते थे। तो वहां कुरान से मुराद जबूर है, ठीक है। तो कुरान असल में कुरान का असल असल लफ्ज है, मतलब यह है कि इस कुरान पे फोकस करो। तुम्हें अगर मानना है तो तुम इस तरह भी मान जाओगे, कुल्ली में भी हिल मौत, मुर्दे भी जिंदा हो जाए। आठवें पारे के शुरू में क्या पढ़ चुके, वलवन्ना नज़ल अलैहिमुल मलाइका, सूरत अल अनाम में ये बड़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि अगर इनके इस कुरान के साथ मुर्दे भी जिंदा हो जाते इन्होंने फिर भी नहीं मानना था। हाँ ये कुरान जिस्मानी तौर पे मुर्दों को जिंदा तो नहीं करता, लेकिन रूहानी तौर पे इंसान के शऊर को जिंदा कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, फिर दिलों को सुकून मिलता है। वलिल्लाहिल अम्रु जमीअ, बल्कि अल्लाह का काम। तुम नबी से कहते हो मौजज़े दिखाओ, नबी नहीं दिखा सकते मौजज़े, उनकी औकात ही नहीं है। कब मौजज़ा दिखाना है कब नहीं दिखाना ये नबी का फैसला नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। लिहाजा यहां से आप और मैं भी अपने लिए अमल की बात लें, कभी लोगों को हिदायत मिल जाएगी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे तो बस पहुंचा देना है। अफलम याइसिल्लजीना आमनू अल्लौ यशाउल्लाहु लहदन्नास जमीया। अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत आयत है। क्या लोग मायूस हो गए, यानी क्या आप, ये अंदाज बड़े ही खूबसूरत सा है अगर आप इसके एक एक लफ्ज पे देखें ना, अफलम यस, क्या पस नहीं मायूस हुए वो लोग जो ईमान वाले हैं। असल में इसमें इस ईमान वालों की तड़प का जिक्र है। आप देखिए कि जिसको खुद हिदायत मिल जाती है ना, उसके अंदर एक अर्ज पैदा होती है। अर्ज क्या होती है? तलब, तड़प कि सबको हिदायत मिल जाए। अब जब वो देखता है कि दूसरे लोगों के दिल में हिदायत की अर्ज तो छोड़िए तलब भी नहीं है, नीड ही नहीं है, उनके दिल में कोई इसकी ख्वाहिश ही नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो परेशान होने लगते हैं। आप इसको पहले एक अपने ऊपर लें, फिर इंशाल्लाह आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। आप किसी को पानी पिलाना चाहते हैं पर वो नहीं पी रहे, बस में बच्चे नहीं पीते ना, गर्मी है बहुत, बाहर से आए, आप कहते बेटा पानी पियो इससे तुम्हें फायदा होगा, वो नहीं पी रहा। खाना, कभी आपने माओं को बच्चों को खाना खिलाते देखा? गोद के बच्चे ढा ढा के पिलाती हैं, नाक बंद कर करके उनके मुंह में चमचियां उंडेलती जाती हैं कि अंदर जाने दो जाने दो। आप किसी को खाना खिलाना चाहते हैं वो खा नहीं रहा, आप किसी को पिलाना चाहते हैं पी नहीं रहा। कभी बच्चों को सुलाने की कोशिश करते देखा है माँ को? माँ सो जाती है वो उठ के फिर आ जाता है कि सुलाए हो माँ को। अब आप इसके ऊपर ले, जब हम लोगों को हिदायत देना चाहते हैं और लोग हिदायत के लिए दिल नहीं खोलते, तो ये वो कैफियत है कि फिक्र करना करो, परेशान ना हो, डोंट वरी। अल्लाह सुबहाना ताला ने हर एक को एक नसीब रखा है। देखिए कि हम आज जिक्र की और इत्मीनान कल्ब की बातें पढ़ रहे हैं ना, पीछे हमने सूरत यूनुस में अला इन औलिया अल्लाह अलैहिम ये भी पढ़ ली। एक गम रह जाता है इस हिदायत के साथ आने के बाद, और वो दूसरों की हिदायत का। ये तो मैं कसम खा के कह सकती हूँ, अपने दिल पे लेके कह रही हूँ, किसी की मुझे नहीं पता। सिर्फ एक गम है दुनिया में, अब कोई जिए कोई मरे, कोई बीमार है कोई खाता नहीं, किसी का कारोबार नहीं, सिर्फ दुआएं उनके लिए। गम नहीं है अल्लाह का से, लेकिन ये बात रोग की तरह अटकी हुई है कि लोगों को हिदायत की तलब क्यों नहीं है, तड़पते क्यों नहीं है। अब जब लोग आपके इन सच्चे जज्बों की कदर ही नहीं करते, फिर आप क्या करें? फिर आप उनके लिए तड़प के दुआ मांगे। और अगर आपको लगता है ना कि उनका हिदायत पे ना आना आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपकी अपनी नमाज खत्म हो रही है, तो फिर आप क्या करें? उनको दिल से निकाल दें। बस सिंपल सा इलाज मेरी नजर में तो एक है कि एक खास हद तक किसी के लिए तड़पे। जब नहीं आता ना आपकी इस बात के जवाब में भी किताब की तरफ, तो फिर आप एक ही काम कर सकते हैं कि उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जाओ फिर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नसीब। मैं तड़पी, मैंने तलब की, कोशिश की, यही हल है। और नबियों को आखिर में यही हल दिया जाता था, गम ना खाओ, इनके हाल पे छोड़ दो, निकल जाओ इस बस्ती से। इसी तरह हर बच्चे और हर इंसान के साथ मामला करते हुए हर इंसान की एक लिमिट होती है, उसके बाद सब्र नहीं होता। अल्लाह ताला यहां ईमान वालों को ऐसा गम करने से रोक रहे हैं कि जो उनको खुद उस मकसद से हटा दे। देखिए अल्लाह तो अपने नबी को कहते हैं कि फला अल्लाह का बाख नफ्सा का अला आसारिहिम, ए नबी आप तो खुद को हलाक कर लेंगे इस बात पे कि ये इल्म यूमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, कि ये इस किताब पर अमल क्यों नहीं कर रहे। तो यहां इस बात को समझ लीजिए कि गम करने की भी एक लिमिट होती है। फिर नहीं है तो ना सही, ठीक है फिर जाओ, फिर मेरे से ज्यादा तो अल्लाह तुमसे प्यार करता है, उसने अगर तुम्हारे अंदर की खैर देखी तो वो तुम्हें फिर जिंदगी में कभी मौका देगा। तो यहां मायूसियों के लफ्ज हैं, यास, यास का लफ्ज फिर तुम्हें बोलते हैं ना, यास वही लफ्ज है। अगर हिदायत देनी होती तो मौजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही अल्लाह उनके दिलों को पकड़ता और हिदायत की तरफ मोड़ देता। अब आगे अल्लाह ताला बताते हैं कि जो लोग खुद हिदायत नहीं लेते, मांगते, फिर अल्लाह उनको कैसे दिखाता है? हाथ से तकलीफें परेशानी है, लेकिन समझ कोई नहीं उनको आता, बल्कि और वो अपने आप को थपकियां दे रहे होते हैं कि देखा ये मुश्किल आनी थी ना, तो अच्छा वो हमने इधर कमिटमेंट नहीं की, फिर ये हो जाता, फिर वो हो जाता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों को छोड़ दो, कैसे? अगली आयत पे देखिए, बल्कि इसका तर्जमा एक दफा फिर सीधा पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग, शायद ये थोड़ी सी ट्रिकी सी बात है इसमें मफहूम की, तो मैं एक स्ट्रेच में इस आखिरी आयत का तर्जमा पढ़ती हूँ ताकि आप लोग इसको देख सके, कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को हिदायत देना चाहता है, लोग ले नहीं रहे, और ऐसे लोगों का हाल किस तरह फिर अल्लाह ताला ने बयान किया। सिर्फ चंद सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको ये आयत पढ़ के सुनाती हूँ। अल्लाह अच्छा, मैं इन आयतों को पढ़ती हूँ ना जब भी, ये जो आखिरी मौजू अभी चल रहा, तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह हमें तो मना कर रहे हैं कि आप इनके हाल पे ना कुड़ो, लेकिन अल्लाह को खुद बड़ा इस चीज का मलाल है कि ये क्यों नहीं आ रहे। ऐसे ही है ना, अल्लाह हमारे इंसानी जज्बात से बेनियाज है, ना हम किसी को तशबीह दे सकते हैं इस चीजों में, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अल्लाह ने लोगों को जलने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग हिदायत पे रहें, हिदायत पे जिए। वो माँ जिसके बच्चे सारे नमाजी हों, फराइज के पाबंद हैं, अखलाक के अच्छे हैं, उस माँ के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा इत्मीनान होता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं आप इनकी फिक्र ना करो। अफलम या यसिल लजीना, अफलम यायसिल्लज़ीना आमनु, क्या अहले ईमान इस पर मुतमईन नहीं हो जाते कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे देता। ये है एक स्ट्रेच में, यानी बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि इत्मीनान पकड़ो कि अल्लाह अगर जबरदस्ती हिदायत देना चाहता तो दे देता। वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू तुसीबहुम बिमा सनौ क़ारियतुम, और जो काफिर इनको बराबर पहुंचती रहेगी इनके अमाल के सबब, क्या? कोई ना कोई आफत। ये लफ्ज कारिया करा से है, बला हादसा, अचानक आ जाने वाली मुसीबत। बेसिकली करा कहते हैं खटखटाने को, ये जब ऐसे खटखट करते हैं ना, इसी से अल कारिया तुम अल कारिया भी ना क्यामत का नाम है, यानी ऐसे होगा जैसे कोई दरवाजे खटखटा रहा है आपका। वतहुल्लू, तहुल्लू का लफ्ज देखिए गिरा खोलना, हा लाम लाम, वह लोग दतम मिल लिसानी में भी हम पढ़ते हैं, उतरते वक्त सामान बांधने वाली रस्सी को खोलना। पहले दौर में लोग घोड़ों पे ऊंटों पे सफर करते थे, फिर सामान रख के ऊपर रस्सी बांध देते थे। तो जब किसी जगह स्टॉप ओवर करते तो क्या करते, उस रस्सी को खोलते। उस कैफियत को भी तहल्लु कहते हैं, ठीक है। बाद में फिर हर खोलने वाली चीज के लिए आया। मैं आपसे पूछूं कि इससे मिलता हुआ लफ्ज आपने कहीं पीछे पढ़ा? जी हलाइला बनाए को, बहू को कहते हैं हलीला। शोहर के लिए, सॉरी जो बेटा है उसके लिए वो औरत हलाल हो गई ना, तो हलीला बहू को कहते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं आप महरमात की लिस्ट में आयत चौथे पारे के बिल्कुल आखिरी आयत में। तो यहाँ क्या मराद है कि औतहुल्लु करीब मिन दारिहिम, या फिर इनके घरों के करीब ही को मुसीबत आ जाती। हत्तयातिया वादुल्लाह, यहाँ तक अल्लाह का वादा पूरा हो जाता। क्योंकि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादों को खिलाफ नहीं करता। ये तो इनका हाल था। अब रह गए आप ए नबी, डोंट वरी। आयत 32 में बराह रास्त तसलियां दी जा रही हैं। वलकद इस्तुख्ज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, और ए नबी आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया। फिर क्या हुआ? फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर मैंने ढील दी, यानी कुछ अरसा तक मैंने इनको ढील दी जो लोग काफिर थे। ये सेकंड फेज था। फिर ثم اخذتهم, फिर मैंने इनको खूब पकड़ लिया। अब आप बताओ فكيف كان عقاب, तो कैसा रहा मेरा अजाब। इमेजिन करें जरा, सूरत अलराफ से लेके अभी तक कौम नू, हूद, सालेह, कौम लूत, कौम शुएब, आले फिरौन का अंजाम, और फिर जरा इस आयत को समझिए। तो यहां जो मुझे लफ्ज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, फअमलैतु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। सारे पर्दे बीच में से हटा के अल्लाह ताला ने कौमों की पकड़ को अपने ऊपर ले ली। यस आई डिड दिस, यस इट वाज माय कंसर्न। पीछे हो जाओ नबी, आप पीछे हो जाए। मोहलत दी शुरू में लेकिन नहीं मानते, तो फिक्र ना करें, आपकी कौम के साथ भी अब यही होगा। आयत 33 बड़ी खूबसूरत आयत है, गौर से सुनिएगा। अफमन हुआ कायमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत, तो क्या वो हस्ती जो हर जान से मुहासबा करने वाली है जो इसने कमाई की है, औरों की तरह हो सकती है? कौन सी हस्ती है वो? अल्लाह की जात। ये जो कायमुन है ना, ये अल्लाह की जात है। क्या तुम्हारे कैमरों की नजरें होंगी जो तुम्हारे टिकट, तुम्हें तुम्हारी स्पीड नोट करती हैं? क्या तुम्हारे ऊपर पुलिस का चेकआउट होगा, चेक होगा? अल्लाह जो हर इंसान के ऊपर नजरें लगाए हुए, हर जान से मुहासबा करने वाली जात है। क्या करते हो, रात को करते हो, दिन में करते हो, अकेले में करते हो, तुम बताओ जरा, वो है या फिर दूसरे जिनको ये बनाते हैं माबूद? के वजह आलू लिल्लाहि शुरका, और उन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए। अल्लाह जैसी कुदरत किसी के पास नहीं, फिर भी ये अल्लाह के शरीक बनाते हैं। ऐसी बसीर, ऐसी खबीर, ऐसी समी हस्ती को छोड़कर, अला कुल्ली शयइन हस्ती को छोड़कर खुद साख्ता माबूद बना लिए जिनकी कोई हैसियत नहीं। चलो ठीक है, पूछो इनसे। कुल, आप कहिए, सम्मूहुम, जरा इनके नाम तो बताओ, ये तुम्हारी करनी वाले कौन है, किधर है? अम तुनब्बियूनहु बिमा ला यालमु फिल अर्दी, क्या तुम अल्लाह को जताना चाहते हो वो शायद जो वो नहीं जानता जमीन में? यानी तुम कहते हो ये दस्तगीर है, अल्लाह को तो नहीं ये बात पता। तुम कहते हो ये मुश्किल कुशा है, अल्लाह को तो नहीं पता। तुम कहते हो ये दाता है, अल्लाह को तो नहीं पता। यानी अंदाज देख रहे कितना सख्त है कि तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो जो अल्लाह को भी नहीं पता। मतलब ये है कि जो तुमने इनके साथ खूबियां लगाई हुई है, अल्लाह तो इनको ये नहीं देता। अम बिज़ाहिर मिन अल कौली, या फिर तुम सिर्फ सतही सी बात करते हो, जो मुंह में आता कह देते हो। इन शरीकों के बारे में तुम्हारे दावे खोखले, इनकी इन दावों की बुनियाद में कोई यकीन नहीं है। तुम्हारी सारी बातें टेम्परेरी हैं, ऊपर की हैं। बल जुजीन लिल्लज़ीना कफरू, बल जुजीन लिल्लज़ीना कफरू मकरुहुम, बल्कि काफिरों के लिए इनकी मक्कारियां मुजयन कर दी गई हैं। वसुद्दू अनिस सबील, और वो रोक दिए गए हैं सीधे रास्ते से, और वो रोक दिए गए हैं सीधे रास्ते से। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. بات واضح ہے نا, کوئی مشکل تو نہیں ہے. یعنی جب اللہ نے ان کے دلوں کو الٹ دیا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, تو ان کے اعمال دیکھتے جاؤ. اللہ نے بتا دیے کہ اب ان کو راہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی بھلا؟ پیچھے آئے چاد یہدی, کس کو؟ منانا, جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو دے گا. کیا ایسے لوگوں کا انجام ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں میں کسی کو ایسا نہ کرے. لہم عذابٌ فی الحیات الدنیا, پہلا عذاب ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو اپنے برے کرتوتوں کی دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزا تو ملتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز, ولعذاب الآخرت اشق, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اشق, شق سے افعل تفضیل ہے, سب سے شدید عذاب تو آخرت کا ہے. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق, تو نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. جب اللہ پکڑے تو محمد نہیں چھڑا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر یہ جملہ کیا ہے کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد نہیں چھڑا سکتے. اس آیت کو لکھ لیا کریں. بعض لوگ نہ سمجھی میں ایسے جملے بولتے ہیں, آپ جواب میں صرف قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ بتا دیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر نبی کیا, دنیا کا کوئی بندہ, کوئی زندہ مردہ, کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. اس کے برعکس آپ نے اپنی زندگی کا مشن لوگوں کو ہدایت دینا بنایا, آپ ان کے لیے تڑپے, آپ 13 سال مکہ میں رہے, 10 سال مدینہ میں رہے, طائف میں گئے, تو ڈونٹ وری, وہ مشکلیں تو ختم. لیکن سنیے کہ اب آپ کو آگے کیا ملے گا. اگر ٹیکس کو ساتھ رکھیں نا, تو پتہ چل رہا ہے کہ جب لوگ آپ کی طلب اور تڑپ کی قدر نہیں کرتے, تو آپ تڑپتے بھی ہیں, ترستے بھی ہیں, لیکن اللہ تسلیاں دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا راستہ نہ بدلیں ان کا حال کیا ہوگا. آیت 35, مثل الجنت التي وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے. کیا؟ تجری من تحتها الانہار, اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. سوچئے ذرا, سی ویو اپارٹمنٹ, بیچ ویو, پام, کیا کیا لوگوں نے بنا دیا. ہمیشہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ پانی کے پاس گھر ہو. اللہ کہتے ہیں تمہارے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ ادا مجہول ہے. مجہول کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ پیسیو وائز ہے. اٹ ول ہیپن, وعدے دیے ہیں متقیوں کو. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنے سے پوچھے, تکوار ہے. رمضان آپ کو متقی بنائے گا. ایک سی ڈی پتہ نہیں کہاں ہے, وہ ابھی آپ کے پاس ادھر ہے کہ نہیں, رمضان اور تقوی. کل بھی ایک جگہ ہم نے سنائی الحمدللہ, ڈنمارک میں یا سویڈن میں کہیں لیکچر تھا, تو تقوی کی ڈکشنری کی تعریفیں ہیں کتنی ساری, کہ سن کے واقعی ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کدھر تقوی ہے. الحمدللہ, تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها, اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے اور سائے بھی. تلک عقبی الذین اتقوا, یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وعقبی الکافرین النار, اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, کون سے کافر ہیں؟ اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے, یہ ڈس بلیور ہے, نان مسلم ہے, کون ہے؟ تو اللہ سے پوچھ لیجئے. اگلی آیت میں جواب ہے, والذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ خوش بھی ہو رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ. یفرحون بما انزل الیک, یعنی اے نبی, کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ یہ کتاب دی اور اس کتاب کے ساتھ وہ خوشیاں بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ مدینہ کے وہ نیک لوگ جن کو قرآن کی خبریں ملتی تھی. کہاں سے؟ کہ مکہ میں ایک شخص ہے, یہ خوشخبری ان لوگوں کی. ابھی اللہ کے نبی مدینہ نہیں آئے, مکی صورت ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں, یہ مدینہ کی ان سعید روحوں کی بات ہے کہ ابھی اللہ کا نبی وہاں نہیں پہنچا, قرآن نہیں پہنچا ان کے پاس. اس کے باوجود وہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ایک نبی کا ظہور کیا اور ان مکہ سے ان کے آنے لیے اچھی اچھی خبروں کو وہ دیکھ رہے تھے.
جو سسٹر ان سے آئی تھی سیریز وہ ادھر نا ڈسٹریبیوٹ کریے گا, جو ٹائٹل والی ہے سسٹر آئی جو سما سے آئی تھی,
بعد میں پوچھ لیں کیا کرنا. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, یہ مدینہ کے ان اہل کتاب کا تذکرہ جو بہت نیک سیرت ہے. ان کو بھی خبریں مل رہی تھی کہ مکہ میں آخری نبی آ گیا, تو یہ ان کی خبریں سن کے خوش ہوتے تھے. لیکن بات بدبخت, وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ, اور بعض گروہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. پورے کا انکار نہیں کرتے تھے. کس حصے کا انکار کرتے تھے لوگ؟ جو ان کے اعمال پہ زد ڈالتا تھا, جو ان کے رسم و رواج پہ چوٹ ڈالتا تھا. تو ان سب کو آپ کیا کہہ دیں؟ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب, اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. کیا پتہ چل رہا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ لوگ مانیں کہ نہ مانیں, آپ اپنا کام کرتے جائیں, پیئر پریشر کا شکار نہ ہو, چلتے جائیں. الیہ ادعو, تم آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے, ہو کیئرز, میں تمہیں ادھر ہی بلا رہا ہوں. آئے 37, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں, والے فیصل بنا کر, حکم دینے والی کتاب بنا کر. یہاں لفظ دیکھیے گا حکمن, لفظ ذرا قابل غور ہے. حکم بمانی فیصلہ, یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ قول فصل. سورت تارک میں ہم دیکھیں گے آئے 13 اور 14 میں, اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل وما هو بالهزل, یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا کلام ہے, کوئی بےہودہ بات نہیں ہے. یعنی یہ کھیل نہیں, تماشا نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم چونکہ ہر وقت اس کو لے رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ کھیل نہیں ہے. ویکینڈ پہ کسی کو ٹریننگ دے رہی تھی, انہوں نے دورہ قرآن کرانا ہے, تو جب میں نے ان کو تھوڑی سی باتیں بتائیں یہ تو پسینے چھوٹے اور کہنے لگی اتنا مشکل کام ہے دورہ قرآن کرانا. تو میں نے یہی آیت ان کے سامنے رکھی تھی, وما ہوا بالہزل, یہ کھیل تھوڑی ہے. اللہ اکبر, ایک انسان کی کہیں بھی بات آپ دوسرے کو بتائیں تو 10 غلطیاں لگ جاتی ہیں, ٹون ہی بدلنے لگتی ہے. آپ نوٹ کرتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہوئے ٹون سے بھی مفہوم بدل جاتا ہے, اور اکثر میں اب کوشش کر رہی ہوں اس سال کے ٹون سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھاؤں تاکہ بات آسانی سے سمجھے گا سیدھا سیدھا پڑھنے سے. تو حقیقت ہے یہ قرآن کوئی کھیل نہیں ہے, یہ قول فصل ہے, یہ فیصلے کرنے سکھاتی ہے, یہ حکمن عربین ہے. پھر آگے بات, اگر لوگوں کو نہیں اچھا لگتا, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی شروع کر دی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا. یہ صرف نبی کو کہا جا رہا ہے نا, مجھے اور آپ کو تو نہیں کہا جا رہا نا, ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ آ گیا ہے, قول فصل آ گئی ہے, تمہیں زندگی میں ڈیسیژن لینے سکھا رہی ہے. اب اگر اس کے بعد اب ان کی خواہشوں کی طرف جھکیں گے تو غور سے سن لو, ما لک من اللہ من ولی ولا واق, پھر آپ کی طرف سے نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی بچانے والا. سوچ کے دنیا والوں کی طرف جانا, جب تم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے پیچھے ڈالتے ہو تو اس پکڑ میں پھر تمہیں ان میں سے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اور رہ گئی بات کہ نبی تھے, آپ کہتے ہیں کیا کریں, اس کلاس میں بیٹھ کے تو دل کرتا ہے سب کچھ کریں, باہر نکلتے ہیں تو پھر دنیا ہی اور ہے. آتا ہے نا سوال, اور حقیقت ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہر فیصلہ آسان, جو مرضی زندگی نام لکھوا دو اللہ کے لکھنے کو تیار, ساری جائیداد لگوا دو لگانے کو تیار, ہے نا کہ یہ بات. لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب اگلی آیت میں دیکھ لیں, آیت 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے بھی پہلے, آپ سے پہلے بھی, یعنی آپ سے پہلے بھی رسول آئے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے بنائی ان کی بیویاں بھی اور اولاد بھی. یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے ساتھ لگ کے بیویوں کو چھوڑ دو, شوہروں کو چھوڑ دو, گھر کو چھوڑ دو, سوائے حضرت عیسیٰ کے, باقی سارے نبیوں پہ یہ آیت فٹ آتی ہے. انہوں نے نکاح بھی کیے, ان کی اولادیں بھی ہوئیں, शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, क्योंकि अभी वो वापिस आके करेंगे अभी जब दोबारा आएंगे। या आज शाम को सुनिएगा आप लोग इंशाल्लाह, अगर मौका मिल सके। अलामत क़यामत का आज जो कोर्स है उसका सेकंड लास्ट डे, कल खत्म हो रहा है वो कोर्स। तो हजरत ईसा पे आजकल हम बात कर भी रहे हैं, तो हजरत ईसा बाद में आएंगे तो शादी करेंगे। यहां से ये पता चलता है कि कोई रसूल भी राहिब नहीं था और अय्यम नहीं था। ये भी एक लोगों ने तसव्वुर दिया कि दीन का काम करना है ना तो बस फिर शौहर बीवी खत्म। नहीं, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब जरूरियात उनके साथ थी। और अगर मैं और आप इस कुरान की आड़ में अपने घर वालों को पीछे डाल देते हैं सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से, तो याद रखिए हम इस आयत का इनकार करते हैं। आप सब अपने बारे में लिखिए जरा, हर एक, मैं अपने इस दीन को अपने घर वालों के सामने किस अंदाज से पेश करती हूं। देखिए, मैं आपको सिर्फ बात समझाने और नसीहत की खातिर इस पर थोड़ी सी बात करूंगी, हालांकि वक्त इजाजत नहीं देता। अगर ये क्लास आपकी 24/7 समझते हैं, हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे की हो, आपको इसी के साथ ही बांधा जा रहा है, तो आप सब अपने इस ख्याल में सच्चे हैं कि हमें बच्चों, घर, शौहर के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कितने घंटे बनते हैं एक हफ्ते के? हम महीने की बात करते हैं, 200 कितने आवर्स होते हैं एक हफ्ते, एक मंथ में? आवर्स नहीं, सॉरी, हाँ जी, घंटे कितने होते हैं एक वीक के? 24 को 7 से जरब दें, जरा फटाफट दें। 24 को 7 से देंगे तो कितने बने? 168। अब इसको 4 से जरब दें, जल्दी से फटाफट बोल दें। 672 आवर्स बनते हैं एक महीने के। आपकी ये क्लास के आवर्स कितने हैं, जो सिर्फ आपके यानी इधर के काउंट है, बाकी को बाद में मिला लें? 4.5 आवर्स है ना, 4.5 को आप दे दिए 4 से जरब, तो कितने बने? 22 घंटे। तो 22 को 4 से जरब दे दें पर कैलेंडर मंथ जिसको आप कहते हैं, उसमें डेढ़ थोड़ा और भी यूज कर लें। कितने घंटे हैं टोटल आपके एक महीने के क्लास के, जल्दी बोले अल्लाह के बंदो। ये मैथ का हिसाब है, कोई आखिरत का हिसाब नहीं जी। 88 आवर्स टोटल कितने थे? 672 माइनस करें 670। अपने नोट्स पे लिखे हैं ये सारी कहानी, मैं ऐसे थोड़ी अब उलझा रही हूँ। 672 आवर्स में से 88 निकाल दें आपके हिसाब के मुताबिक, 564 आवर्स स्टिल आपके पास है जरूरियतन वाजवादन के लिए। फिर अगर किसी का शौहर ये कहे कि जी इनको तो अब घर का फुर्सत नहीं और होश नहीं और ये तो बच्चों को नहीं देखती, तो ये आप इल्जाम दिलवा रहे हैं खुद इस किताब को और किताब वालों को। पूछे खुद से, चलिए आज आप पूछ के आए अपने घर वालों से, क्या इस कोर्स के बाद मेरा आपको तवज्जो देना या घर को देखना पहले ही जैसा है, पहले से बेहतर हुआ है या खराब हो गया? तो फिर आप खुद देखें क्या आपकी क्या गवाहियां आती हैं। यह अब आपको मैंने सिर्फ सोचने का अंदाज दिया है। कभी कुरान का नाम लेकर रुसवा ना करें इसको। ये तो ऐसे ही जैसे एक लड़की शादी के बाद अपने महके वालों के नाम पे बड़ी क्यू मतलब बड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि मेरे घर वालों को ना कुछ कहना, क्योंकि मैं उधर से आ गई और मेरा आपके साथ ताल्लुक है। हम इस किताब को अच्छी बातें भी सुनवा सकते हैं और हम इस किताब को बुरी बातें भी सुनवा सकते हैं। आप देखिए 24 घंटे में से 4.5 घंटे आसान हिसाब है, स्टिल आपके मेरे पास पीछे 19.5 घंटे होते हैं। छोटे लेवल पे ले आइए तो वक्त खत्म नहीं होता। लेकिन बहरहाल यह कि अल्लाह ने यहाँ ये बात बताकर कि नबी जो थे वो कोई ऐसे दुनिया से कटे हुए लोग नहीं थे, और अल्लाह के नबी के तो 9 घर थे एक वक्त में। कैन यू इमेजिन, इतना मसरूफ शख्स जिसने 5 वक्त की नमाज भी जमात से पढ़वानी है क्योंकि वो इमाम मस्जिद है, और जिसने फैसले भी करने हैं क्योंकि हाकिम है, और बीवियों के घर में एक चक्कर रोज लगाते थे चाहे रहना किसी दूसरी जगह पे होता था, लेकिन सबका हाल चाल पूछ के आते थे, कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे। हमसे एक घर ही ना मैनेज हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। बहरहाल उनके معجزوں کا جو مطالبہ تھا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے وما کان علی رسول, اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے ان یاتی بی آیتن اللہ بِاذن اللہ کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آتا مگر اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب, ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت ہے. کیسے؟ اب یہ آیت غور سے سننے کی ہے, اس کا اگلی آیت سے تعلق ہے, اس کو ساتھ پڑھیں گے. کیا کرتا ہے اللہ اس کتاب میں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. کیونکہ وعندہ ام الکتاب, اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب. یہ دو آیتیں تھوڑی سی مفسرین کے نگاہوں میں اس کے اوپر بات زیادہ ہوئی, اور وہ کیا ہے, اگر اس کے آپ سمپل سی میننگ لے لیں یعنی اس کا عام مثال لے لیجئے, تو اس آیت سے مراد کیا ہے کہ نبی کوئی بھی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے, اور ہر لکل اجل کتاب, ہر شے کا ایک مقرر وقت ہے. اس سے مراد ہے قوموں کو دھمکی, تم نبیوں سے معجزے مانگتے ہو, اگر تمہاری مہلت کا ایک خاص وقت نہ ہوتا تو تمہیں کب کا اللہ نے پکڑ لیا ہوتا. یہ مراد ہے, سمجھ گئے؟ یعنی نبیوں کے یہ معجزے اپنی ذات اور اپنی ہستی سے بھرے ہوئے معجزے اور مطالبے ہیں. اللہ نے تمہیں جو اس مطالبے کے باوجود جینے کی مہلت دی ہوئی ہے نا, صرف اس لیے کہ اجل کتاب لکھی ہوئی ایک مدت ہے, ورنہ تمہیں اللہ نے پکڑ کے پٹخ دینا تھا کہ تم اتنے خود سر ہو گئے ہو کہ نبی سے اتنے بڑے بڑے مطالبے کرتے ہو. یہ تو ہے اس کا ایک صاف اور عام مفہوم, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا مفہوم اجل اور کتاب کا, مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق تقدیر سے ہے. سورت کے انٹرو میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس سورت کے اندر ہم تقدیر پہ بھی بات کریں گے, تو پھر اس آیت کا مفہوم تھوڑا سا بدل جائے گا. اور وہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے, ایک اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. تو تھوڑی سی تقدیر پہ بات کر لیتے ہیں اس اینگل کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح اللہ کے پاس ہے. تو بس اپنے آسان لفظوں میں بتاؤں گی کیونکہ الحمدللہ اس پہ ایک ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے, تقدیر کی حقیقت. آپ سننا چاہیں تو اسے اپنی ڈیٹیلز لیں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں نے ابھی بات شروع کرنی ہے نا تو آپ کے ذہنوں میں سوالات ابھرنے شروع ہو جائیں گے, تو پھر یہاں تو ہم بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات, چند جملے جو ہر سال بولتی ہوں وہ آپ کے سامنے بھی بولوں گی, تقدیر حکم الہی نہیں علم الہی ہے, ٹھیک ہے. کیسے؟ تقدیر اللہ کا حکم نہیں کہ یہ کرو یہ ہو, بلکہ اللہ کا علم ہے, پری نالج ہے. پری ڈیسٹینی کہتے ہیں نا اس کو. دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر لکھ دی, ایون میری آپ کی نہیں, سورج چاند ستاروں جاندار بے جان سب کی لکھ دی, کہاں زلزلہ آنا ہے, کہاں آتش فشاں پھٹنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ نے جب یہ سب لکھا نا تو اس کی اوریجنل کاپی اپنے پاس رکھ لی, سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے, وہ کبھی نہیں بدلتی. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق, ہینگنگ ڈیسٹینی. لیکن اس کی کچھ کاپیز فرشتوں کو دے دی جن کے ذریعے کام کروانے تھے دنیا میں, ٹھیک ہے. جو تقدیر کی کاپیاں فرشتوں کے پاس ہیں نا وہ چینجیبل ہیں, لیکن جو اوریجنل ٹیکسٹ اوپر اللہ کے پاس ہے وہ انچینجیبل ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. آپ ایک ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں, اب اس کی پہلی کاپی کیا ہوتی ہے؟ اوریجنل کاپی ہوتی ہے. پھر آپ جب دوسروں کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا, یو کین چینج اٹ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, مثال دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی عمر لکھی 100 سال, یہ 100 سال دیے گا, اللہ کے فیصلے میں یہ عمر اتنی تھی, ٹھیک ہے. فرشتوں کو جب وہ کاپی ملتی ہے نا, اب وہ بندہ گناہ کرتا ہے, کچھ گناہ اس سے ہو گئے, اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے رزق میں اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے, نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک اللہ قص کی سنت ہے. اب ہوگا کیا کہ اس شخص کی اصل عمر لکھی تھی 100 سال, اس نے کچھ گناہ کیے تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 90 سال, 10 سال اس کے گناہ کھا گئے, ٹھیک ہے. अब फरिश्तों को पता है कि इस बंदे को 90 साल की उम्र में पकड़ लेना हमने, लेकिन उस बंदे को अल्लाह गुनाहों से माफी की तौफीक दे देता है। फरिश्तों को पता है कि 90 साल की उम्र में इसकी जान लेनी है, सिर्फ ये कि तौबा करता है बल्कि उसके बाद नेकियां करता है, समझ रहे हैं? कोई दुआ करता है उसके हक में, तीसरी चीज ये भी लिख लें, यानी नेकी बदी और दुआ, ये तीन कोड वर्ड रख लें, नेकियां गुना और दुआ, ये तीन कलम हैं जो तकदीर को बदल देते हैं। बहुत डिटेल है इसमें, आप बाद में सुन लीजिएगा इस लेक्चर को अगर आप चाहें। हमारे गुना हमारी जिंदगी में कमी कर देते हैं, बरकतें छीन लेते हैं, नेकियां हमारी खैर करती हैं, सिला रहमी उम्र में बरकत डालती है, ठीक है? अब क्या होता है कि असल कॉपी अल्लाह के पास है, वो नहीं कभी बदलेगी। दुनिया में ये सारे मामले फरिश्तों को भी नहीं पता होते, वो कहते हैं कि पहले तो अल्लाह ने कहा था इसकी उम्र 90 साल हो, अब इस बंदे के लिए किसी ने दुआ की कि अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, इसको लंबी उम्र दे, अल्लाह कहते हैं अच्छा इसकी दुआ के बदले में इसके 10 साल बढ़ा दो, वो 90 की बजाय 100। फरिश्ते चेंज क्या कर रहे हैं कि असल उम्र इसकी 90 थी, लेकिन इसकी दुआ की वजह से 10 साल बढ़ के 100 हो गए, मौत उसको 100 पे ही आनी है। अब ये 100 जाके ऊपर अल्लाह के लिखे हुए मिलाए तो बिल्कुल सेम है। इतनी बात समझ आ गई? ये हम ऐसे नहीं छोड़े हुए खुले। आज भी आप देखिए कि बाजार, आप कहते हैं हमें तो कोई कोई पुलिसमैन ही नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर कैमरे देख रहे हैं ना, आपको टिकट आ जाता है ना घरों में। तो तकदीर अल्लाह का इल्म है, उसको पता था हम कल क्या करेंगे, हमारे साथ कल क्या मामला होना है। ये कैसे है, जैसे एक उस्ताद अपने स्टूडेंट के मेलान को देख लेता है, इंक्लाइनेशन को देखता है कि इसकी तवज्जो कोई नहीं है क्लास में, वो कहता है आप फेल हो जाएंगी, आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगी कल जिंदगी में, और हो सकता है आप अपने किसी गलत अमल की वजह से कल जेल में पहुंच जाए। और ये सारी बातें लिखकर उस्ताद अपने स्टूडेंट को दे दे एक पर्ची कि कल जिंदगी में अगर किसी मुश्किल में आ जाओ ना तो इसको खोल के पढ़ना, और वो इसमें यही बातें लिख दे। अब वो बच्चा वाकई गलत काम करे, गलत गैंग के शिकार हो जाए और किसी चोरी गबन के केस में वो जेल में पहुंच जाए, उस दिन उसको उस्ताद की बात याद आए कि मेरे उस्ताद ने कहा था कि किसी मुश्किल में पढ़ो तो इस खत को खोल के पढ़ लेना। अच्छा, वो खोल के देखा, उसमें ये सब लिखा कि ये शख्स बिल्कुल नॉन सीरियस है और एक दिन ये जेल में पहुंच जाएगा। वो फौरन जेलर को बुलाए, जेलर जी ये देखो मेरी बजाय मेरे उस्ताद को जेल में डालो, क्योंकि उसने आज से 10 साल पहले लिख दिया था कि मैं जेल में आऊंगा। तो क्या जेलर मान जाएगा? ये उन लोगों की मिसाल जो गलत काम करके कहते हैं अल्लाह का हुक्म होता तो हम ना करते। हम हर चीज अपने शौक से करते हैं। एक उस्ताद जब इसको प्रिडिक्ट कर देता है कि ये बच्चा मेहनत करके बड़ा बनेगा, ये अच्छा होगा, आप अपने बच्चों के बारे में करते रहते हैं, ये मेरी बच्ची बहुत अच्छा घर संभालेगी, ये मेरा बच्चा बड़ा समझदार है, तो ये तो मेरा और आपका थोड़ा सा इल्म है ना, कई दफा हमारी उम्मीदों से बिल्कुल हालात उलट होते हैं। लेकिन अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि इस कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह को पता था कि आज इस वक्त 9 जून 2014 को हम इस क्लासरूम में बैठे होंगे और फुलां फुलां गैर हाजिर होगा और फुलां आके भी फोकस नहीं करेगा और फुलां बड़े जौक और शौक से सुनेगा। अल्लाह को उस दिन भी ऐसे ही पता था जैसे इस वक्त हमें पता चल रहा है। अल्लाह का इल्म है। अगर तकदीर हुक्म होता ना फिर हम कह सकते थे हम बंधे हुए हैं। तकदीर का बंधा नहीं, दो चीजें, एक है तकदीर एक है तदबीर। तकदीर अल्लाह की तरफ से है, तदबीर हमारी तरफ से। तकदीर और तदबीर मिलती हैं तो काम होता है। जैसे आप मैचेस की डिब्बियां पे दोनों तरफ मसाला लगा होता है ना तो उनको रगड़ते हैं ना तो फिर आग लगती है। अल्लाह कुछ चाहे और हम नहीं चाह रहे, किस मौजू पे आज बात हो रही है? हिदायत। अल्लाह चाहते हिदायत दे, कुरान में आता है अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का फैसला किया, लेकिन लोग खुद नहीं फैसला कर रहे तो वो काम नहीं हो रहा। और अल्लाह चाहता है कि आप अच्छे काम ना कर, यानी अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग गुनाह करें, लेकिन लोग अपने शौक से करते हैं तो वो पलट जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कि कुछ को मैं रखता हूं, कुछ को मैं मिटा देता हूं। इसके बारे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दुआ भी आती है जो वो तकदीर के मामले में मांगा करते थे। उर्दू में बोलती हूँ क्योंकि अरबी में तो आप साथ साथ नहीं लिख सकते, लेकिन बाद में दोहरा दूंगी इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो। वो कहते थे कि अल्लाह अगर तूने हमें खुशकिस्मत लिखा है इस लिखे को साबित रख। और अल्लाह, अगर तूने हमें बदबख्त लिखा तो इसको मिटा दे और हमें खुशबख्त लिख ले, क्योंकि तेरे पास इल्मुल किताब है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह की फुल अथॉरिटी, कोई राइटर किताब लिखे तो क्या उसमें चेंजेस नहीं कर सकता? अल्लाह के पास पूरी अथॉरिटी मौजूद है, मैं और आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कायनात में कुछ चीजें हमें बाहर और तरह दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ और हालात होते हैं। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारी उम्र बढ़े तो हमें नेकियां करनी चाहिए, गुनाहों से रुकना चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए। हदीस में आता है कि कोई चीज तकदीर को नहीं फेरती सिवाय दुआ के। अल्लाह ताला तकदीर के, दुआ के जरिए से फैसला जो किया होता है उसको चेंज करा देता है। बज़ाहर फरिश्तों को और हमें लग रहा होता है कि चेंज है, लेकिन अल्लाह के लिखे के मुताबिक वो बिल्कुल एक ही होता है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारे भी तकदीर के बुरे लिखों को मिटा दे और अच्छे लिखों को कर दे। और आप कहते हैं कि हर साल जब लैलतुल कदर होती है, ताक रातों में से कोई एक रात, बाद लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे उसको 15 शाबान से रिलेट करते हैं, हालांकि सूरत दोहान की इब्तदाई आयतें और सूरत कदर दोनों एक ही रात के बारे में, जिसको हम सब लैलतुल कदर कहते हैं, उस रात फैसले होते हैं। आप इस साल इंशाल्लाह रमजान चुके करीब है अभी, तो आप जब लैलतुल कदर को आपको मौका मिले तो खूब रो रो के ये दुआ मांगे कि अल्लाह ये अगले साल में जो कुछ तूने मेरे हक में खैर लिखी है उसको साबित कर दे, और अगर कोई बुरी बात लिखी है तो उसको मिटा दे। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म से फायदा देगी। हजरत मुजाहिद से पूछा कि हम में से किसी का ये दुआ करना कैसा है कि इलाही अगर मेरा नाम नेकों में है तो बाकी रख, और अगर बदों में है तो इसको हटा दे और नेकों में कर दे। आपने फरमाया ये तो अच्छी दुआ है। साल भर के बाद फिर मुलाकात हुई या कुछ और अरसा गुजर गया तो फिर इनसे यही बात दोबारा पूछी गई, तो आपने इन्नाज़लना खुफी लैलत मुबारक, सूरह दुहान की इब्तदाई आयात से दुआएतों की तिलावत की, फिर फरमाया लैलतुल कदर में साल भर की रोजियां यानी जो खैर मिलनी है और तकलीफें मुकर्रर हो जाती हैं, फिर जो अल्लाह चाहे उसको मुकद्दम और मौखर करता है, लेकिन सआदत और शिकावत की किताब नहीं बदलती। हजरत उमर की जो दुआ है ये खाना काबा का तवाफ मांगते हुए ये करा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझ पर बुराई और गुनाह लिख रखे हैं तो इनको मिटा दे, तो जिसे चाहता है मिटाता है और बाकी रखता है, क्योंकि उम्मुल किताब तेरे पास है। हजरत उमर से काब थे, तो चलिए इसको छोड़ दें, ये फिर आपका जहन और से और चलेगा। बहरहाल इस मौजू पर इतना ही काफी है। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने अच्छे कामों को बढ़ाने और बुरे कामों से रोकने वाला बना दें। अब बिल्कुल सूरत का इख्तिताम है। अल्लाह ताला एक ऐसी बात की खबर देते हैं कि जो साइंस से भी मुतल्लिक है और उसका वही से भी ताल्लुक है। कैसे? आयत नंबर 40 देखिएगा, वइन मनुरियन्नक बाद अल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ्फयन्नक, और ख्वाह हम दिखा दें आपको इसका कुछ हिस्सा जिसकी धमकी हम इनको दे रहे हैं, अजाब लिख लीजिए इसके नीचे, या फिर हम आपको वफात दे दें, फइन नमालैकल बलाग, बस हमारे आपके जिम्मे तो उस पहुंचाना है, वालैनल हिसाब, और हिसाब लेना हमारे जिम्मे। पूरी सूरत में नबी सल्लम को मक्का वालों ने जो सताया उसका तस्करा था। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अजाब तो इन पे आना है, इसका वादा तो हमने आपसे कर दिया, या तो आपकी जिंदगी में इनकी पकड़ आ जाएगी या आपके बाद आएगी, ये हो के रहेगा, बस आप बात पहुंचा दें और उसके बाद इनका हिसाब लेना देना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या आप नहीं देखते क्या? आयत 41, अवलम यरौ अन्ना तिलर्दन कुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये लोग देखते नहीं कि हम जमीन को घटाते चले आ रहे हैं इसके किनारों से? वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं पीछे डालने वाला इसके हुक्म को, वहुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला। इस आयत में बहुत सारी मुख्तलिफ तफसीरें मिलती हैं। सिंपल तारीफ क्या है کہ یہ مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں, ان کا خیال کیا تھا کہ آپ کا پیغام ختم ہو جائے گا اور لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کفر کم ہوتا جا رہا ہے, اسلام پھیل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چینجز آ رہی تھی اس میں یہ بہت بڑی چینج لوگوں نے بھی فیل کی کہ دن بدن آپ کی دعوت زور پکڑتی جا رہی ہے. پہلے 2, 4, 6, 10 تھے, ہوتے ہوئے اتنے بڑھ گئے. کیسے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منہ چھپانا پڑ رہا تھا جو کہ دوسری طرف تھے. ٹھیک ہے, تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ کفر کم ہو رہا ہے, اسلام کا غلبہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بعض نے اس کو سائنس سے ریلیٹ کیا. آج اگر آپ زمین کو تھوڑا سا دیکھیں جغرافی کی نظر سے, تو آج زمین خشک ہو رہی ہے, یعنی زمین کے اندر آپ کہیں کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے نا دن بدن, تو فاصلے کم ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک مراد ہے. ٹھیک ہے, ایک تیسری بھی اس کی تفسیر ہے جس کو ایک لفظ میں آپ سمجھ جائیں گے, گلوبل ویلج, فاصلے کم ہو رہے ہیں. پہلے جن جگہوں پہ مہینوں میں لوگ پہنچتے تھے, وہاں پھر دنوں میں, اور دنوں کے بعد گھنٹوں میں, اور آپ دیکھیے وہاں منٹوں میں پہنچتے ہیں. پوری دنیا ایک ویلج بن گئی, آپ ایک ٹیکسٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں خبر ہو جاتی ہے. پہلے چلے ٹیلی فون تھا, ٹیلی کام تھا, تار لوگ بھیجتے تھے, کبوتر تو پتا نہیں کبھی بھیجتے تھے کہ نہیں, لیکن سنا ہوا کہ پہلے کبوتر کے پاس بھی میسج تھا. اچھا, اس دور کے کبوتر بھی انٹیلیجنٹ ہوں گے, آج بھیج کے دیکھیے وہ بھی کوئی گڑبڑ کر دیں گے, کیونکہ اب وہ بھی کچھ سائنٹیفکلی ہو گئے ہیں. تو ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ فاصلے سمٹ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجیے, ہم سب کو اس سے کیا بتایا گیا, ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہنا ہے, تم اس میں اپنا حصہ ڈال لو. تمہاری وجہ سے بھی انشاءاللہ کفر, شرک, بدعت, بے دینی, بے حیائی سمٹیں گی, تم اپنے ساتھ رہو. اور تقدیر کا نام لے کر کام نہ چھوڑو. جو لوگ تعصب کی وجہ سے پھر نہیں مانتے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اور ان کے لیے بھی دعا کرو, اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہو. یہی بات ہوگی, یہ بات سورۃ انبیاء میں آئے گی, آیت 44 میں بھی, افلا یرون اننا الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں, تو کیا یہی غالب آنے لے. تو یہ مفہوم انشاءاللہ وہاں بھی جائے گا. اور بہت کچھ اس پہ ہوا مکہ سے مدینہ جانے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آخری انجام کس کا ہوا, آیت 42, بس اب لاسٹ آیتیں پارے کی سورت کی. وقت مکر الذین من قبلہم, وقت مکر الذین من قبلہم, اور جو ان سے وقت مکر الذین من قبلہم, اور جن سے پہلے تو انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی. ہر دور کے منکرین حق نبیوں اور رسولوں کی دعوت حق کے لیے سازشیں کرتے تھے, جال بنتے تھے, لیکن کیا ہوا, فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, وہ جانتا ہے ہر جان جو کماتی ہے,
بریک ریڈی رکھیں,
وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ آخرت کے گھر کی کامیابی کس کے لیے ہے. دھمکی ہے, اتنے سال سے صبر کیا جا رہا تھا, اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری پکڑ ہونے والی ہے, اسلام پھیل رہا ہے, اور تم سب اپنے گناہوں کی سزا بھگتو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام تھا, اس کا تذکرہ آیت کی آخری آیت میں, کیا, آیت 43, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافر کہتے ہیں, لَسْتَ مُرْسَلَا, آپ اللہ کے رسول کوئی نہیں, نعوذ باللہ, آپ مرسل نہیں ہیں, کچھ نہیں آتا آپ کو, ایسے ہی خود ہی بڑے بن گئے, ایسے ہی آپ آ کے ہمارے باپ دادا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا. اچھا, قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم, پہلے آپ سوچیے کہ اگر آپ کو کوئی الزام لگائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا. اب ظاہر ہے ہمیں کوئی مرسل تو کہتا نہیں, نہ ہم میں سے کوئی, اللہ نہ کرے اس کی بات کرتا ہے, کوئی آپ کو کہہ دے تمہیں کچھ نہیں آتا, تم حافظ نہیں ہے, تم عالم نہیں ہے, تم بالکل نہیں اللہ سے ڈرتی, تمہارے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے, تو ہم آگے سے کیا کہیں؟ ایک لمبی ڈکشنری کی لسٹ کھول دیں, ہر لفظ جو بھی اس کے خلاف بول سکے بولے. لیکن دیکھیے اللہ سکھا رہا ہے اپوزیشن کو کیسے فیس کرو, تنقید اور کرٹیسزم کے اوپر کیسے دیکھو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان, دیٹس اٹ. मैं तो कुछ नहीं करता, ये जुमला कौन बोलता है? जिसको अपने हक पे होने का यकीन होता है। वमन, और जिनके पास किताब का इल्म है वो भी इस पर गवाह है, ये कौन है? देखिए, मेरी हालत को अल्लाह जानता है या इल्मुल किताब वाले जानते हैं? सवाल पैदा होता है कि यहां मन से कौन लोग मुराद है। तो मन से मुराद है, बास कहते कि मन से मुराद अल्लाह है क्योंकि किताब से मुराद लोहे महफूज है। बास कहते कि मन से मुराद यहां अहले किताब है, तौरात और इंजील थी जिनके पास, कि उनके पास भी तस्करे मौजूद है। और बास कहते कि मन से मुराद नबी सल्लम और किताब से मुराद कुरान या जिब्राइल है, यानी नबी सल्लम या जिब्राइल मुराद है। सारी बातों को सही कर दें, खुलासा क्या है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि मैं उसका रसूल हूं। फिर हर उस शख्स की गवाही जो आसमानी किताबों का इल्म रखता है। अल्लाह तो जानता ही कि उसने मुझे भेजा है, मेरा तो डायरेक्ट मामला उसके साथ है। ये अहले किताब भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सूरह बकरा आयत 142 और सूरह अल अनाम 20 में हमने अहले किताब के बारे में पढ़ा कि यारिफून हुकमा यारिफून अबनाहुम, ये अल्लाह के नबी को रसूल की हैसियत से ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है, सारी दुनिया भी सूरज का इनकार कर दे तो सूरज सूरज ही रहता है, भी हिदायत का सूरज होते हैं। लोग उनसे फायदा उठाते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी संवर जाती है, और अगर इस तरह के बेढंगे किस्म के इल्जाम लगाते हैं नबी को कुछ नहीं होता। अल्लाह ने उनको जिस रास्ते पे लगाया लगाता है, ना कामयाबी मिले कोई बात नहीं, इंजाम अच्छा हुआ। तो मेरे और आपके लिए भी इसमें यही बात है। सबक शुरू हुआ था इस्तजाब लिल्लाही पे, अल्लाह की दावत को लबैक किया उनका हाल था। एंड पे अल्लाह ताला ने दो टोक फैसला कर दिया कि जो इखलास नियत के साथ अल्लाह के रास्ते पे चलेगा या आने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको जरूर तौफीक देगा। और आप देखिए कि इतनी मुखालफतों के बावजूद भी अल्लाह के नबी ने दीन का काम नहीं छोड़ा। हमें जरा से इख्तलाफ राय हो जाता है तो हम सबसे पहले दीन का काम छोड़ते हैं, बाकी कामों की तो दूसरी बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह फरमा दे। कोई सवाल या कोई बात आपके जहन में हो तो शेयर कर सकते हैं जी। हम आपने आज के सबक से क्या मैसेज लिया? तत्मईनुल कुलूब, जी। और कोई जी? आप रशीद जी, यानी आजमाइशें तो आएंगी, इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन जिस चीज को नहीं छोड़ना वो किताब है। देखिए, किताब की मिसाल एक डोरी की तरह है, डोरी छूटती है तो जान के लाले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जिंदगी के कोई भी हालात हो, इस किताब की डोरी हमारे हाथ से ना छूटे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ब्रेक लीजिए, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं 15 मिनट के बाद, बल्कि चले आज 16 ले लें, 12:59 हुए हैं, तो इंशाल्लाह 1:15 पे हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر کثیر استاذ جی، الحمدللہ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت صورت، اور ہم نے اس سے کیا سیکھا اپنے لیے جی، الحمدللہ۔ مجھے اس میں یہ بات بہت زیادہ ٹچ کرنے والی بھی تھی اور اپنا چیک کرنے والی بھی تھی کہ ہدایت کب انسان کو ملتی ہے، اور ہدایت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، اور یو نو ایوری تھنگ کہ جس سے ہمیں خوشی ہو اور جس سے ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہو۔ تو اس تھنکنگ کی کیسے ملے گی؟ یہ صرف تبھی ملے گی جب ہمارا شوق اتنا ہائی لیول پر ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ یقین اتنا اسٹرانگ ہو۔ اور جب آئی تھنک یہ چیز ہمیں پتا ہو کہ کسی چیز سے ہمیں سکون ملے گا اور کسی چیز سے نہیں ملے گا، تو پھر ظاہر ہے ہم اسی مطابق اپنی کوشش کرتے ہیں۔ صرف امیزنگ صرف میپ دیکھ کر نہیں ڈیسٹینیشن پہ پہنچا جا سکتا، انشاءاللہ چلنا ہے، right path per, and then steadfast to rehna hai, inshallah ta'ala. Every sabak is explanation to all my problems. Every day I feel I have a divine connection. Alhamdulillah. हमने दिल का सुकून दुनियावी चीज़ों में नहीं ढूंढना बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र में दिल मुतमईन होते हैं। और बिल्कुल सही बात है ना, अब जिक्र का भी हमने देख लिया है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ अल्फाज बल्कि कुरान भी जिक्र है। तो हम सब हर लिहाज से इस चीज़ को अपने साथ रख सकते हैं। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट वॉन्ट टू नो समवन वाज़ आस्किंग मी अल्लाह वॉर्न एवरी मुस्लिम एवरी वन मुस्लिम बट दोज़ आर बॉर्न अ काफिर क्या उनको अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में जैसे उस्ताद ने भी हमें कई दफ़ा बताया ना कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पे होता है और वो मुसलमान ही होता है ना, तो लेटर ऑन फिर उसके ऊपर जो 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 पेरेंट्स होते हैं वो उसको उसी मुताबिक कर देते हैं। और जब वो शख्स अगर उसके ऊपर हुज्जत कायम हो जाती है, जैसे अल्लाह ताला उसको कोई चांस देते हैं कि जब उस तक इस्लाम भी पहुँचे और उसका मैसेज भी पहुँचे, और फिर अगर वो ना ले तो देन ऑफकोर्स उसकी पकड़ है। लेकिन अगर वो उसको कोई हुज्जत नहीं मिले, जो कि कभी नहीं हो सकता, अल्लाह ताला हर शख्स पर हुज्जत कायम करते हैं, तो देन ऑफकोर्स फिर वो दूसरे मुसलमान उम्मत और हम सब पर आती है ये बात। लेकिन इंशाल्लाह उस्तादों से भी पूछेंगे कि वो इसको और मजीद एक्सप्लेन करें। बहुत सारी बातें सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन आई गेट सो मेनी क्रिटिक्स जस्ट रिमेंबर से अल्लाह इज इनफ फॉर मी टू गिव विटनेस। एंड समटाइम्स हम देखते हैं ना कि ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों की हिदायत के लिए इतने ज़्यादा हरीस हो जाते हैं समटाइम्स कि हमारी अपनी हमारा अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो इफेक्ट होने लगता है और फिर हम परेशान रहते हैं और हम अपनी इबादतों में इतना दिल नहीं लगा पाते। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि फिर इतना गम नहीं पालना जिससे हमारी अपनी आखिरत डिस्टर्ब होने लग जाए ना। और ये कोई काम भी गलत नहीं करना उस वक्त कि जब किसी दूसरे को हिदायत मिले, क्योंकि अपना नुकसान करके किसी दूसरे को अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर इससे क्या फायदा मिल रहा है। टुडेज लेसन वॉज अमेजिंगली रिलेवेंट टू माई वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान इज द बुक ऑफ अल्टीमेट गाइडेंस एंड नॉलेज। अल्लाह सुब्हान तआला की याद में खुशी, दिल का इत्मीनान मिलता है, तवक्कल इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही बात है, गमगीन हो जाते हैं लोगों के लिए ना। दुआ में कितनी पावर है, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है स्पेशली रमजान में। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, एक मोमेंट कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। कितना कुछ सीखने को है ना। आप देखें कि आप लोग सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं लेकिन हर चीज ही, और हम सबको कितना शौक है, हम हर लेसन में यही देखते हैं तवक्कुल कैसे बढ़ाएं, तवक्कुल कैसे बढ़ाएं। तो आई थिंक आज मुझे ये जुमला था ना कि जिक्र से इंसान का तवक्कल बढ़ता है, और सही बात है कि जब इतना हम अल्लाह ताला को याद करेंगे तो हमें कोई मुश्किल आए भी, कोई परेशानी आए भी, तो वही ऑटोमेटिकली फिर याद आएगा कि नहीं नहीं अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है, क्योंकि याद है ऑलरेडी सारा वक्त। द चेनिंग फैक्टर्स ऑफ तकदीर वर अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और एक मोमेंट कभी डिप्रेस नहीं होता। अल्लाह सुब्हान ताला सरी अल हिसाब, वी शुड अंडरस्टैंड एंड बी केयरफुल। अल्लाह हर एक की जिंदगी में कम अज कम एक बार जरूर हक व बातिल को पहचानने का मौका देते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। नो सच थिंग एज डिप्रेशन और एंगजाइटी इज इन आवर दीन। अल्हम्दुलिल्लाह इज अ मोमेंट फाइन पीस विद कुरान। और जैसे कि आपको पहले भी शेयर किया था, मुझे ये चीज बहुत अमेजिंग, और जब कभी मैं दोबारा इसको रिकॉल करती हूँ मुझे बहुत ज्यादा एक तरह से हैरान कर देती है कि कैसे कुरान की लिस्टनिंग, कैसे कुरान की रिसाइटेशन, उसका पढ़ना हमारे इंटरनल बॉडी के सेल्स को रिफॉर्म कर देता है ना, और कैसे फिर हमारी पूरी बॉडी रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड हो जाती है। तो ये इतना बड़ा मिरेकल है, इतना बड़ा मौजजा है, और हम सब इसको डेली लाइफ में फील भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये चीज भी कि बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह ये कि हम भी अपनी ब्रेक करते हैं, आप लोग भी सब अपनी ब्रेक करें। थोड़ा सा टाइम हमने डिस्कशन में ले लिया लेकिन इंशाल्लाह आप लोग सब फिर अपनी ब्रेक करके वापस आइए, फिर हम वापस अपनी तफसीर को कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, वाहसनुल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।